का आज क्लास चल रहा था, 10/11/1966 गुरुवार को 10वें पेज पर बात चल रही थी, तीसरी लाइन में ये देखो कि अपना धर्म श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ देवी देवता धर्म है। श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ माना श्रेष्ठ धर्म है चंद्रवंश, क्षत्रिय धर्म, और उससे भी श्रेष्ठ है देवता धर्म। परंतु देवता धर्म में सोलह कला संपूर्ण होने चाहिए, सोलह कला संपूर्ण से अगर कम है तो पक्के देवता ही नहीं है। जैसे क्षत्रिय हुए है वैसे गिरती कला के वो देवता है। तो कहेंगे जो सोलह कला संपूर्ण सतयुग के पहली पीढ़ी में राधा कृष्ण उर्फ लक्ष्मी नारायण होते हैं, वो हैं श्रेष्ठ देवी देवता। और उनसे भी श्रेष्ठ कौन है, है? सतयुग की पहली पीढ़ी में जो सोलह कला संपूर्ण देवी देवताएं हैं, लक्ष्मी नारायण या कहो राधा कृष्ण, उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? कहेंगे सचिव की पहली पीढ़ी में जन्म लेने वाले जो राधा कृष्ण हैं, उनके भी रचयिता रचयिता सदा ही रचना से ऊंचे होता है। और वो रचयिता ठेठ सतयुग के नहीं है, जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ युग है संगम युग के हैं। जहां साक्षात भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, ऊंचते ऊंच बाप, जिसका कोई बाप नहीं होता, सभी धर्मों के फॉलोअर्स के बाप हैं, उन्हें कहेंगे ग्रेट फादर्स, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि। परंतु उन्हें श्रेष्ठ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो इस दुनिया में आते हैं तो पहले जन्म में तो श्रेष्ठ पार्ट बजाते हैं, जीवन मुक्ति का पार्ट बजाते हैं, परंतु उसी जन्म में संग के रंग में ऐसे आते हैं कि भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट कर्म करते हैं और भ्रष्ट कर्म सिखाते हैं। इसलिए उनको भ्रष्ट आचरण करने वाला मनुष्य तो कहेंगे, देवता नहीं कहेंगे, और ऊंचते ऊंचे धाम से वो आत्माएं आती हैं परंतु जिनका आधार लेते हैं, प्रवेश करते हैं, वो आत्माएं सतयुग से ही आती हैं, परंतु उनको भी वो धर्म पिताएं अधीन कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि सतयुग में तो भारत ही था, वो भारतवासी थे, और वो भारतवासी जो नंबरवार धर्मों में कन्वर्ट होते गए, पहले तो सतयुग में थे, कहने के लिए सतयुगी देवताएं तो थे, परंतु ये कमजोरी कहां से आ गई जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गए, दूसरों से प्रभावित हो गए। भगवान ने तो कहा है अपने धर्म में मर जाना श्रेष्ठ है, स्वधर्म में रहना श्रेष्ठ ही श्रेष्ठ है, स्वमाने आत्मा, आत्मा माने ज्योति बिंदु, जिसे गीता में कहा है अणु अणियांसम अनुस्मरेत्य, अणु से भी अणु है, इसी चैतन्य आत्मा अविनाशी आत्मा जो सतयुग से लेकर जन्म लेती आई, देवता धर्म से क्षत्रिय धर्म और क्षत्रिय धर्म से द्वैतवादी द्वापर युग में आकर के इन द्वैतवादी धर्म पिताओं के संसर्ग संपर्क में आते ही पराधीन हो गई, पर धर्म स्वीकार कर लिया। ये कमजोरी कहां से आई? ये कमजोरी जब आत्माओं का बाप जो बापों का भी बाप कहा जाता है, क्योंकि धर्म पिताओं का भी बाप, जिसे धर्म पिताएं भी मानते हैं, आदम, एडम, आदिनाथ आदि के रूप में, परंतु वो आदम तो मनुष्य सृष्टि का आदि पिता है, मनुष्यों को देवताओं से तो श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। और देवता उन्हें कहा जाता है जो पूरे 16 कला संपूर्ण हो। पहली पीढ़ी में सतयुग में 16 कला संपूर्ण थे, परंतु जो 16 कला संपूर्ण राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण थे, जिनकी यादगार आज भी मंदिरों में देखी जाती है, यहाँ और जैसे दिल्ली के बिरला मंदिर में देखें, तो उनके दो मंदिर बने हुए हैं यादगार। एक में संगम युगी विष्णु की यादगार रखी है, विष्णु की मूर्ति माने लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप, कैसे कंबाइंड, मन से, वचन से, कर्म से, यहां तक कि वाइब्रेशन से भी एक समान। उनका वाइब्रेशन भी एक दूसरे से विपरीत नहीं जा सकता। जिस वाइब्रेशन के प्रभाव में आकर के दुनिया के जड़त्वमयी बुद्धि वाले जानवर, पक्षी, कीड़े मकोड़े भी सात्विक आत्मा का रूप धारण करते हैं, और सभी प्राणी सत्य धाम के वासी बनते हैं। वो परिवर्तन वाइब्रेशन से होता है या ज्ञानेंद्रियों में श्रेष्ठ है, दृष्टि से होता है या कर्मेंद्रियों से होता है, है? कैसे परिवर्तन होता है? वाइब्रेशन से सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, जड़ जीव जंतु भी परिवर्तित हो जाते हैं। जो शास्त्रों में यादगार है कि ऋषियों मुनियों के आश्रम में शेर बकरी भी एक घाट पानी पीते थे, ऐसा वाइब्रेशन था। शेर और बकरी में भी आत्मिक भावना आ गई थी, तो वो वाइब्रेशन संगम युग में जो परम पिता है, धर्म पिताओं का भी पिता आदम और उसका भी पिता मुसलमान जिसे कहते हैं खुदा, जो खुद आता है, बुलाने से नहीं आता, और हिंदुओं में कहते हैं सदाशिव। वो आदम का भी बाप है, वास्तव में कहें तो वही ऊंचे ते ऊंचे भगवंत है आत्मिक रूप में, परंतु आत्मा शरीर के बिगड़ कुछ कर ही नहीं सकती। इसलिए वो आदम में प्रवेश करता है, परंतु आदम खुदा तो नहीं है। कहेंगे खुदाता है, कहेंगे या नहीं कहेंगे, हैं? आदम सृष्टि का आदि पुरुष, जिसे भारत में हिंदुओं में शंकर कहते हैं, जिसका कोई माँ बाप नहीं, जिसका कोई जन्म नहीं दिखाया जाता, मृत्यु नहीं दिखाई जाती, वो आदम खुदा है या नहीं है, है? मुसलमान लोगों में तो बात आती है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। नूर से जुदा नहीं, नूर तो आत्मा का होता है कि शरीर का होता है, हैं? पांच तत्वों से बना जो शरीर है उसका नूर होता है, नूर सच्चाई है, नूर जो रूह में होता है वो सच्चाई है, या पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश ये पंचभूत सच्चाई है, पंचभूतों से बना हुआ ये शरीर मानव शरीर या देवताओं का भी शरीर सदाकाल रहता है, है? नहीं रहता, परंतु आत्मा है? आत्मा सदाकाल रहती है। चलो कोई आत्माएं हैं जो संपूर्ण योगी नहीं है, संपूर्ण योगी बन नहीं पाती, क्योंकि संपूर्ण ज्ञानी नहीं बन पाती, क्योंकि मनुष्य आत्माओं में जो मनुष्यों का पिता आदम है, वो मनुष्य आत्माओं के बीच बड़ा भाई है, मझला भाई है या छोटा भाई है, है? बड़ा भाई है, और वो बड़ा भाई किसका बच्चा है, है? जो आत्माओं का बाप है, जिसका कोई बाप नहीं उसका बच्चा है। आत्मा निराकार, तो आत्मा का बाप भी निराकार। तो जो बड़ा भाई है आत्माओं के बीच, आत्माओं का बाप बड़े भाई को अपना निराकारी वर्षा देगा, या मध्यम भाइयों को देगा, या अंत में प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाले भाइयों को देगा? हिस्ट्री की परंपरा क्या कहती है, है? हिस्ट्री में तो यही देखा जाता है, चाहे पौराणिक हिस्ट्री हो, चाहे मनुष्यों की बनाई हिस्ट्री हो 2500 साल की, यही बात आती है। खास भारत के राजाओं में कि राजाओं ने अपने बड़े बच्चे को सारी बादशाही सौंप दी, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं नंबर वार भाइयों के रूप में, वो सब बड़े भाई को अपना बाप मानते हैं या बाप समान मानते हैं? बाप समान मानते हैं, बाप नहीं मानते। इसीलिए मुसलमानों में ये कहावत ठीक ही है, आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा भी नहीं है। ये कैसे? ये ऐसे कि जो बापों का बाप परम पिता है, जिसे सुप्रीम गॉड फादर अंग्रेज लोग कहते हैं, जिसे ऊंचा कोई पिता नहीं होता, वो आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का बाप होने के कारण निराकारी ज्ञान का वर्षा देने वाला है, कोई साकारी वर्षा देने वाला नहीं है। तो निराकारी स्टेज धारण करने वाली जो आत्माएं हैं, इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर शिव बाप के दिए हुए निराकारी ज्ञान के आधार पर संपन्न ज्ञानी या योगी बनती हैं। जितना ज्ञान उठाया उतना योगी बनेगी, ज्ञान कम उठाया तो योगी भी कम बनेगी। ज्ञान माने जानकारी, ज्ञान माने जानकारी, काहे की जानकारी? सच्चाई की जानकारी या झूठ की जानकारी? सच्चाई की जानकारी। इसलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। क्या? सत्य को ही शिव कहा जाता है, और जो शिव है जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, जिसका अपना शरीर जैसे होता ही नहीं, होता है, है? शिव को अपना शरीर तो नहीं होता, वो तो दूसरी आत्माओं के शरीर में प्रवेश करता है, परंतु दूसरे को तो पर कहा जाता है। क्या? पर माने दूसरा, स्व माने अपना। तो शिव बाप का, ज्योतिबिंदु बाप का, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा ऐसी नहीं है जिसके लिए वो समझे कि ये मेरा अपना है, स्व है। जैसे दुनियावी बाप भी अपने बड़े बच्चे को अपना सारा राजपाट सौंपते हैं, वर्षा देते हैं, अपना लखते जिगर समझते हैं, दिल समझते हैं, तो शिव बाप का इस 500-700 करोड़ रूपी जो मनुष्य सृष्टि है उसमें अपना कोई नहीं है। कोई है अपना या नहीं है? 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 अरे अरे कुछ तो बोलो, 80 साल हो गए, ईश्वरीय ज्ञान उठाते उठाते शिव बाप जो बापों का बाप है, सुप्रीम गॉड फादर अंग्रेज लोग भी कहते हैं, इतनी बड़ी दुनिया में उसका अपना कोई नहीं है आत्मा। जिसे वो अपना कह सके, देखो ब्रह्म महावाक्य जो कहा जाता है, ब्रह्मा के मुख से निकला महावाक्य है, वेदवाणी, ब्रह्मा के मुख से वेद निकले, वो वेदवाणी भी मनुष्यों की लिखी हुई नकली वेदवाणी नहीं, असली वेदवाणी, जिस ब्रह्मा में शिव प्रवेश करके वो वेदवाणी बोलता है, और उसमें भी पहले पहले गीता ज्ञान सुनाता है, जो बोला है। अभी गीता ज्ञान कहेंगे, गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे, किसके मुख से बोला है? दादा लेखराज ब्रह्मा के मुख से बोला, लेकिन ब्रह्मा के मुख से जिससे बोला और बताया भी कि मैं जिसमें प्रवेश करता हूं उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। उस ब्रह्मा के लिए भी कह दिया ये पराया तन है। क्या कह दिया? पराया तन है, लोन लिया हुआ है। क्या बोला? लोन लिया बोला या अपनत्व दिखाया? है लोन लिया, किराए पे मकान लिया है। तो किराए का मकान अपना होता है या पराया कहेंगे? है पराया कहेंगे। फिर शिव ज्योति बिंदु जो ऊंचे ते ऊंचे आत्मा है, आत्माओं का बाप है, परम पिता कहा जाता है, सुप्रीम सोल गॉड फादर कहा जाता है, इस सृष्टि पर उसका अपना कोई नहीं।
अरे
है? होगा कोई नहीं है? ओहो, ये बम्बैया लोग ऐसी ऐसी बातें कैसे गीतों में बोल देते हैं, इतने बड़े जहां में कोई नहीं हमारा। चलो उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। शिव बाबा जिसे हम बाबा नहीं, शिव बाप जिसे हम आत्माओं का सुप्रीम सोल बाप कहते हैं, इस सृष्टि पर रहता है या छोड़ के चला जाता है? छोड़ के अपने धाम चला जाता है या रहता है? हैं? अरे बोलो,
रहता है।
शिव बाप आत्माओं का बाप, त्रिकांदर शिव बाप, तीनों कालों को जानने वाली आत्मा, सदा शिव, कभी शिव माने कल्याणकारी, कभी अकल्याणकारी नहीं बनता, किसी आत्मा के लिए अकल्याणकारी नहीं बनता है? वो शिव बाप इस सृष्टि पर रहता है, वो आत्मा इस सृष्टि पर रहती है, सदा काल नहीं, क्यों छोड़ के जाती है?
उनका अपना कोई नहीं, इसलिए छोड़
दिया। उनका अपना कोई नहीं है, है? इसलिए ब्रह्मा बाबा ये गीत चलाते थे मुरली से पहले, चल उड़ जा रे पंछी, अब ये देश हुआ बेगाना। अच्छा, शिव बाप के लिए ये सारा देश, सारी दुनिया बेगानी हो जाती है, इसलिए चला जाता है, है?
सबको ले जाता है,
है?
सबको ले जाता है,
सबको
ले जाता है,
सबको
ले जाता है,
सबको ले जाता है। अच्छा, माना जो आदम है, सृष्टि का आदि पुरुष है, जिसे एडम भी कहा है अंग्रेजों ने, जैनियों ने आदिनाथ कहा है, हिंदुओं में जिसे शंकर कहते हैं, आदिदेव, तुम आदिदेव है, पुरुष है पुराण, तुमस्य जगतस्य परम निधानम, तो उसकी आत्मा चली जाती है, है? अरे शिव बाप के साथ आदम की आत्मा चली जाती है, जाती है या इस सृष्टि पर रह जाती है? है? रह जाती है, अभी तो कहा सबको ले जाता है, है? ये कैसा ज्ञान है? अभी अभी कहते सबको ले जाता है, अब यह भी कहते हैं कि वो आत्मा रह जाती है। अरे एक पक्की बात बताओ ना,
एक सेकंड के लिए चले जाते हैं,
एक सेकंड के लिए चली जाती है, कहाँ जाती है?
परमधाम।
मन परमधाम कोई ऊपर है उस आत्मा के लिए, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई आत्मा नहीं है। अरे तो दो बातें हो गई ना, अभी अभी कहा सब आत्माओं को ले जाता है, दूसरी आत्माओं की तो बात छोड़ दो, मनुष्य आत्माओं की बात करो, 500-700 करोड़ जो भी मनुष्य आत्माएं हैं सब को ले जाता है।
बीज आत्मा एक रह जाती है,
है?
बीज आत्मा एक रह जाती है,
एक बीज रूप आत्मा रह जाती है, वो परमधाम नहीं जाती, वो बाप के घर में, उसे नफरत है क्या बाप के घर में जाने से? अरे उसे बाप के घर में जाने से नफरत है, मना करते हैं हम नहीं जाएंगे, हैं?
नहीं।
फिर अरे बाप तो कहते हैं तुम बच्चे परमधाम को भी इस सृष्टि पर नंबरवार उतार लेंगे, कहते हैं या नहीं है? और सदाकाल के लिए उतार लेंगे इस संगम युग में या अल्पकाल के लिए उतार लेंगे है? जब परमधाम ही इस सृष्टि पर तुम बच्चों के लिए उतर आएगा 100% इस सृष्टि पर परमधाम तुम्हारे लिए आ जाएगा, तो कोई और दूसरे परमधाम जाने की जरूरत है? हा? अरे है या नहीं है? नहीं। तो इसे साबित हुआ कि शंकर जिसे भारतीय शास्त्रों में कहा गया है वो इस सृष्टि पर सदा काल विराजमान है। क्या उसका नाश, नाश माने उसके पार्ट का नाश इस 5000 वर्षीय सृष्टि रूपी रंगमंच पर कभी होता ही नहीं, शास्त्रों ने यही बताया है और बाबा ने भी यही बताया। एक शिव बाबा है जो इस सृष्टि पर सदा कायम है, बाकी इस सृष्टि पर कोई चीज सदा कायम है ही नहीं। तो ये बात साबित हुई कि सुप्रीम सोल बाप ने ये परंपरा स्थापन कर दी इस दुनिया में मनुष्यों के लिए कि मनुष्य मात्र खासकर भारतवासी अपने बड़े बच्चे को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे कर जाए और वानप्रस्थ हो जाए। क्या ऐसे ही हुआ ना दुनिया में, खास करके भारत में यही परंपरा चलती रही ना है? बड़े बड़े राजाओं को ही ले लो हिस्ट्री में, वो क्या अपने बड़े बच्चे को राजाई सौंप करके वानप्रस्थी नहीं हुए है? हुए ना। तो उन्होंने ये परंपरा फॉलो की और चलाई किसने? बापों का बाप शिव बाप, वो स्वयं ये परंपरा चला देता है और कहता भी है ब्रह्मा मुख से, क्या त्रिमूर्ति देवता देवताओं की तीन मूर्तियां ऊंच ते ऊंच, ब्रह्मा की मूर्ति, विष्णु की मूर्ति और सर्वोपरि सबसे ऊपर शंकर की मूर्ति। सूक्ष्म बतन में जो तीन पुरियां दिखाई गई हैं, उनमें भी ब्रह्मा की मूर्ति सबसे नीचे, मध्यम मूर्ति विष्णु और सबसे ऊपर शंकर की मूर्ति। तो साबित होता है, और बाबा ने ब्रह्मा के निकले मुख से निकली वाणी में भी बोला कि कहते हैं देव देव महादेव, ब्रह्मा देव विष्णु देव और सबसे बड़ा महादेव। तो बड़ा बच्चा कौन हुआ? महादेव बड़ा बच्चा हुआ। तो सेवक का बड़ा बच्चा कौन हुआ?
महादेव
बड़ा बच्चा हुआ। तो बड़े बच्चे को शिव बाप ने अपना सारा खूट ज्ञान का भंडार दे दिया। और वो अखूट भंडार जिस बच्चे ने पाया, वो उस अखूट भंडार को यूज करके, अखूट भंडार को प्रैक्टिकल जीवन में प्रयोग करके, ग्रहण करके, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बड़े से बड़ा रचयिता बाप कहा जाता है। रचयिता साकार होता है या निराकार होता है? सृष्टि साकार, चाहे सतयुग की सृष्टि हो, त्रेता युगी हो, द्वापर युगी हो, कलयुगी हो, साकार या निराकार? सृष्टि साकार या निराकार? अरे चार युगों की जो सृष्टि है वो साकार है या निराकार है? साकार है। तो साकार सृष्टि का रचयिता भी साकार ही होगा, रचयिता भी साकार और उसकी रचना भी साकार। कुम्हार घड़ा बनाता है, कुम्हार हुआ रचने वाला रचयिता और घड़ा हुई रचना, दोनों साकार हैं या एक निराकार एक साकार? दोनों साकार। साकार से साकार की पैदाइश होगी और निराकार से निराकार की पैदाइश है, क्योंकि निराकार बाप जब इस सृष्टि पर आता है तो हम बच्चों का आत्मा रूपी नंबरवार जन्म होता है। क्या नहीं समझा? शिव बाप निराकार ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप ज्योति बिंदु इस सृष्टि पर आत्मलोक से उतर करके आता है, जिसे ब्रह्मलोक कहते हैं, पारलोक कहते हैं, परे ते परे लोक पारलोक। तो जिसमें प्रवेश करता है उसका नाम क्या रखता है? ब्रह्मा। ठीक है, 500-700 करोड़ जितने भी इस मनुष्य सृष्टि की प्रजा है वो सारी मनुष्य सृष्टि का पिता। अच्छा पिता है, परम पिता है, और साकार है, तो फिर माता कैसी होगी? क्योंकि ब्रह्मा, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, जो बड़ी बड़ी माताएं कही गई हैं, ब्रह्मा रूपी माताएं, वो ब्रह्मा नामधारी एक है या अनेक है? अनेक है, चित्र भी दिखाए जाते हैं, चतुर्मुखी ब्रह्मा और पंचमुखी ब्रह्मा, मूर्तियां बनी हुई हैं, तो चित्र और मूर्तियां चरित्र की यादगार नहीं है, हैं या नहीं? तो उस नंबरवार चरित्र का इस सृष्टि पर दिखावा भी हुआ होगा। नंबरवार चरित्र रंगमुचिया रंगमंच रूपी सृष्टि पर वो चरित्र दिखाया होगा या नहीं दिखाया होगा? हैं? इसीलिए कहते हैं परम ब्रह्म। ब्रह्मा नामधारियों में कैसा ब्रह्म? परम ब्रह्म। मना जिस ब्रह्म रूपी माता में बापों का बाप शिव रहता है। बाप कहाँ रहता है? अरे बड़े से बड़ा बाप होगा, बापों का बाप होगा, ग्रैंडफादर होगा, बच्चों का फादर, फादर का फादर, ग्रैंडफादर। तो जो ऊंचे से ऊंचा एवरलास्टिंग फादर होगा, तो सबसे जास्ती बुजुर्ग हुआ ना? नहीं, सबसे जास्ती अनुभवी हुआ ना? अनुभवी माने सबसे जास्ती जानकार होगा ना? है? तो शिव बाप तो जानकार है ही, त्रिकालदर्शी है ही, लेकिन जिसमें पहले पहले प्रवेश करके उसको माता बनाता है उसे कहा जाता है परम ब्रह्म। और शास्त्रों में भी यही बात लिखी है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरे गुरुओं को नमः नहीं, चाहे ब्रह्मा हो चाहे विष्णु हो चाहे शंकर हो। क्या इन तीनों को नमन नहीं? जो इस सृष्टि पर महान ईश्वर के रूप में हुआ महेश्वर, उसको भी नमन नहीं। किसको नमन? परम ब्रह्म को नमन करता हूं। मैंने माता नामधारियों को इतना महत्व दिया कि पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच जो परम पार्टधारी परम पुरुष है, पुरुष माने आत्मा, आत्माओं में जो परमात्मा है, परम पुरुष, उसने किसको महत्व दिया है? मां को महत्व दिया, परम ब्रह्म। अब बताओ इस सृष्टि में पार्ट बजाने वाली आत्माओं में जो ऊंचे से ऊंचा पार्टधारी आत्मा है, वही माता को इतना ऊंचा दर्जा देता है। जब इस सृष्टि को वसुधैव कुटुंबकम बनाता है, क्या बनाता है? वसुधा माने सारी पृथ्वी पर सारी दुनिया के प्राणी, मनुष्य मात्र भी एक परिवार बन जाते हैं। परिवार किससे पैदा होता है? बाप से पैदा होता है। तो वो परमपिता संगम युग में आकर के संगम युग में इस सृष्टि को ऊंचे से ऊंचा परिवार बना देता है, जिस परिवार में 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, कम या बेसी, थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए, आत्मिक स्थिति में जरूर स्थित हो जाती है। क्योंकि जब तक आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं होंगी, ज्योति बिंदु नहीं बनेंगी, देह भान को नहीं छोड़ेंगी, तब तक बाप उनको अपने घर नहीं ले जाएगा। तो बताओ कौन सी आत्माओं को अपने घर ले जाएगा और कौन सी आत्माओं को इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल के लिए स्थायी करके जाएगा? जो बोला इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज नहीं होती, क्या कहा? क्या इस सृष्टि पर सदा काल कायम कोई चीज, और चीजों में सबसे बड़ी चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज है 5 तत्वों से बना हुआ मनुष्य का शरीर। बता दिया, कोई मनुष्य मात्र का शरीर ऐसी चीज नहीं है जो इस सृष्टि पर सदा कायम रहे। फिर बोल दिया, सदा कायम इस सृष्टि पर एक शिव बाबा ही है। और बाबा किसे कहा जाता है? हैं? साकार और निराकार के मेल को। इसका मतलब कोई तो है आत्मा जो इस सृष्टि पर शरीर धारण करते हुए भी जिसको काल नहीं खाता, उसका नाम ही है कालों का काल, महाकाल। जिसको कोई काल खा नहीं सकता, वो सारी दुनिया को खा जाएगा, परंतु उसको महामृत्यु के समय, महाविनाश के समय कोई नहीं है जो उसका विनाश कर तुम अरहसी, गीता में आया, जो उसका विनाश करने में सक्षम हो। अभी समझ में आया? क्या किसी षष्ठी रूपी रंगमंच पर कोई आत्मा है जो शिव के समान सुप्रीम सोल बाप, बापों के बाप के समान निराकारी निर्विकारी निरहंकारी रूप धारण कर लेते हैं। सबसे पहले उस बाप का परिचय देने के लिए शिव बाप ज्योतिबिंदु सुप्रीम सोल गॉड फादर इस सृष्टि पर आता है, अपना परिचय देने के लिए नहीं आता है। किसका परिचय देने के लिए आता है? त्रिमूर्ति में कहता है त्रिमूर्ति के चित्र में बाप का परिचय दो। किसका परिचय दो? बाप का परिचय दो। बच्चे इधर उधर की बातें करते रहते हैं, टिक टिक करते रहते हैं, बाप का परिचय कोई देता ही नहीं। अरे 80 साल हो गए, ब्रह्मा कुमारियों ने जो अपन को प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहते हैं, उन्होंने बाप को पहचाना ही नहीं है। उस बाप को नहीं पहचाना जिसका ज्ञान त्रिकालदर्शी बाप देता है। ब्रह्मा की वाणी में, दादा लेखराज ब्रह्मा की वाणी में, जिस दाढ़ी मूछ वाले विकारी मनुष्य दादा लेखराज की भक्ति मार्ग में पूजा नहीं होती, मंदिर नहीं होते, मूर्तियां नहीं बनती। उस ब्रह्मा के मुख से किसका परिचय देने आता है? जिसका परिचय अगर कोई जान जाए, क्या तो समझ लो मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लिया। जान जाए, पहचान जाए और एवरलास्टिंग समय के लिए जब तक इस सृष्टि पर आत्मा रहे तब तक के लिए निश्चय बुद्धि हो जाए, मन अमर हो जाए, अनिश्चय बुद्धि की मृत्यु नहीं हो। अभी क्या होता है? अभी निश्चय अनिश्चय का चक्र चलता है या नहीं चलता है? अभी अभी समझते हैं, निश्चय बुद्धि होते हैं। खून से भी यज्ञ के आदमी लिख करके देते थे और अभी स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट शपथ पत्र लिख करके देते हैं कि ये हमारा बाप है। और फिर बाद में अनिश्चय बुद्धि होने लग पड़ते हैं। अनिश्चय बुद्धि हुए उसका कारण भी बता दिया। वो कारण पता है क्या बता दिया? कारण बताया एक से ज्ञान सुनना चाहिए, अनेकों से ज्ञान सुना तो ज्ञान विविचारी हो जाएगा। क्या ज्ञान दुग्ध कहो, ज्ञान जल कहो, कैसा हो जाएगा? हैं? विविचारी हो जाएगा। जैसे दूध का भरा हुआ घड़ा हो, शुद्ध दूध, उसमें सर्प का एक बूंद विष डाल दो, क्या हो जाएगा है? सारा विश्व हो जाएगा। ऐसे ही ये बुद्ध रूपी घड़ा है, इस बुद्ध रूपी घड़े में जो बाप से ज्ञान लिया, बाप का ज्ञान लिया, जो ज्ञान बाप का परिचय, बाप के सिवाय और कोई दे भी नहीं सकता। क्या क्या कहा? बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता, चाहे वो आत्माओं का बाप हो और चाहे वो मनुष्य सृष्टि का बाप हो, उसका परिचय बाप के सिवाय कोई नहीं दे सकता। तो बताओ इस मनुष्य सृष्टि साकार में साकार मनुष्यों का बाप आदम आदिदेव एडम साकार रूप में बाप बनकर खुद आता है या खुद आता है या कोई बुलाता है? हैं? बुलाता है?
खुद आता।
बुलाता नहीं है? भक्ति मार्ग में सच्ची भक्ति मार्ग में किसी ने बुलाया नहीं है? बुलाया भी है। और संगम युग में बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं? बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं? दिल के अंदर से आवाज आती है या नहीं आती है? आ जाओ है? आती है, बार बार आवाज आती है, बाबा आ जाओ, अवस्था गिर रही है। तो वो खुद आता है कि बुलाने पर आता है? हैं? खुद आता है। कोई कहे कि हमने बुलाया तब आया, तो उसको बुलाते हुए किसी ने देखा या सुना? कोई नहीं, ये अंदर की बात है, झूठ भी हो सकता है। और बाबा ने भी बोला ब्रह्मा मुख से, क्या जो बुलाते ही नहीं, क्या जो बुलाते ही नहीं उनके पास में आता नहीं, और जो बुलाते हैं क्या कहकर बुलाते हैं? पतित पावन सीताराम, किसका नाम कह के बुलाते हैं? हैं? राम का नाम लेकर के बुलाते हैं। पतित पावन आओ, ब्रह्मा का नाम देते हैं पतित पावन, विष्णु का नाम देते हैं पतित पावन, शंकर का नाम देते हैं पतित पावन, क्योंकि शंकर तो खुद ही पतित है, विष पीने वाला है, उसको पतित कहेंगे या पावन कहेंगे? हैं? पतित कहेंगे। और विष कहा ही जाता है पराई स्त्री अथवा पर पुरुषों का इंद्रियों का संग करे, संबंध जोड़े, इंद्रियों से व्यभिचारी संबंधी बने, उसे कहा जाता है विषय विकारी, व्यभिचारी। नाम भी दे दिया है शंकर, शंकर माने मिक्स या प्योर?
मिक्स।
शंकर माने मिक्स, मिश्रित। तो शंकर का नाम नहीं लेते पतित पावन। आओ पतित पावन सीताराम कह के बुलाते हैं, या पतित पावन शिव कह के बुलाते हैं? क्यों पतित पावन शिव कहें, शिव को बुलाएं, तो क्या गड़बड़? हाँ शिव बिंदी, मुंह मान लिया बिंदी है,
बिंदी से तो काम होता
है। हाँ संग का रंग जो है वो बिंदी से कैसे लगेगा? निराकार से संग का रंग संबंध कैसे जुटेगा? भगवान के लिए तो कहते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव द्रविणम, तुमेव मम देव देव सर्वम, तुम मेरे सर्व संबंधी हो। शिव बाप भी कहते हैं मैं तो तुम बिंदु बिंदु निराकार आत्माओं का निराकार बाप हूँ, दूसरा कोई संबंध तुम आत्माओं के साथ मेरा नहीं है, है? शिव ज्योति बिंदु का बिंदु बिंदु आत्माओं के साथ कौन सा संबंध है, है? आत्मा आत्मा भाई भाई और शिव उनका बाप, कोई दूसरा संबंध है? दूसरे संबंध कब बनते हैं? है? जब वो निराकार शिव ज्योति बिंदु किसी साकार मनुष्य तन में प्रवेश करता है तब सब प्रकार के संबंध बनते हैं। पहले से पहला बताया त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तू, तुम का संस्कृत में अर्थ यह है तू एक, तू एक मेरी माता भी है, तू एक मेरा पिता भी है। और मुरली में भी ब्रह्मा मुख से बोला है, क्या बोला है? मैं एक ही मुकर्रर रथ में बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सदगुरु भी, तीनों का रूप एक है, एक ही आत्मा है। तो बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है और सदगुरु भी है। तो वो एक कैसे? वो एक रूप बताओ, है? एक माता और पिता दोनों कैसे हो जाएगा? अरे अरे माता फीमेल होती है और पिता मेल होता है, क्या अगम बगम कर दिया? तो वो माता भी है पिता भी है, कोई सोचेगा, कोई विधर्मी होगा तो सोचेगा, लांछन लगा दे, अरे जरा भी हो सकता है, ना माता ना पिता। नहीं, वो तो परम पुरुष है, जो भी पुरुष मात्र हैं, स्त्री नहीं, जो भी इस दुनिया में पुरुष मात्र हैं, जिनके लिए बोला ब्रह्मा मुख से ब्रह्म वाक्य सब पुरुष दुर्योधन दुशासन है। क्या बोला? इस दुनिया में सब पुरुष क्या हैं? सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। अच्छा, विष्णु को भी पुरुष रूप में दिखाते हैं चित्रों में, ब्रह्मा को भी पुरुष रूप में दिखाते हैं, शंकर को भी पुरुष रूप में दिखाते हैं, नारायण को भी पुरुष रूप में दिखाते हैं। तो क्या इस दुनिया में नारायण को कहेंगे?
नारायण तो सभी दुनिया
के। हाँ, नारायण को नहीं कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर हो सकते हैं संगम में पुरुष रूप में, और वो दुष्ट युद्ध करने वाले हो सकते हैं पुरुष रूप में, दुशासन दुष्ट शासन कन्याओं माताओं के ऊपर करने वाले हो सकते हैं, लेकिन नारायण के लिए नहीं बोला। इसीलिए बोला सबसे सहज और सबसे अच्छा पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। क्यों? क्योंकि शंकर याद करने वाला पुरुषार्थ ही अधूरी आत्मा है या संपूर्ण आत्मा? अधूरी आत्मा है, तब तो याद में बैठा है, याद का पुरुषार्थ कर रहा है ना। याद के सब्जेक्ट को रिवाइज कर रहा है ना, अभ्यास कर रहा है कि नहीं है? याद का नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो अगर संपूर्ण होता तो याद करने की क्या दरकार? इसीलिए शिव के जितने भी पुराने पुराने मंदिर हैं, आपने देखा होगा रामेश्वरनाथ मंदिर कंपिल में, चारों तरफ दीवालों में जो देवताओं की मूर्तियां रखी हुई हैं, उनमें मुख्य स्थान पर शंकर की मूर्ति रखी है देवता के रूप में, चारों तरफ। और बीच में कौन है? है? शिवलिंग है। तो संपूर्ण कौन है, बड़ा कौन है? है? बीच में जो रखा है वो शिवलिंग बड़ा या शंकर बड़ा या और देवताएं जो आसपास हैं वो बड़े हैं? शिव बड़ा। और उस सब शिव का सात्य के यादगार द्वापर युग के सतोप्रधान पीरियड में बना था या नहीं?
सोमनाथ मंदिर
है, सोमनाथ मंदिर में उसका सतोप्रधान सत्व प्रधान रूप यादगार के लिए बनाया गया। उस यादगार रूप में पत्थर का लिंग और बीच में हीरा रखा हुआ था। अब बताओ वो पत्थर किसकी यादगार और वो हीरा किसकी यादगार?
है? पत्थर साकार की हीरा हीरा।
पत्थर साकार की यादगार और हीरा
निराकार।
कौन?
निराकार शिव।
शिव
निराकार शिव की यादगार। लेकिन शिव तो ब्रह्मा मुख से कहता है कि मैं न पूज्य बनता हूँ और न पुजारी बनता हूँ। ये आपने क्या कह दिया है? अगर वो हीरा जो निराकार की यादगार है वो शिव की यादगार है, शिव आत्मा की यादगार है, तो शिव आत्मा जो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी चलाती है गीता ज्ञान सुनाती है वो ये कैसे कह सकती कि न मैं पूज्य बनता हूँ न मैं पुजारी बनता हूँ। तो फिर बताओ किसकी यादगार?
बाबा वो शिवलिंग में शिवलिंग की पूजा होती है, हीरा की पूजा तो नहीं करते
हैं। हीरा की पूजा नहीं होती? अच्छा, वहाँ जो शिवलिंग रखा था पत्थर की पूजा करते थे सोमनाथ मंदिर में। पत्थर ज्यादा कीमती होती या होता है या हीरा ज्यादा कीमती होता है? तो लोग बेवकूफ थे,
शिवलिंग को बड़ी जल चढ़ाते हीरा के ऊपर।
अरे वो तो आज चढ़ाते हैं, जहाँ हीरा रखने की किसी की हिम्मत नहीं है, पहचान में भी नहीं आता है कि असली हीरा कौन सा है और अमेरिकन हीरा कौन सा है नकली। साकार में निराकार किया। साकार कौन है? साकार, अच्छा साकार प्रजापिता, तो पतित का नाम है, पतित मनुष्य का नाम है प्रजापिता, माने 500-700 करोड़ प्रजा का पिता, प्रजापिता नहीं कहेंगे। हाँ, पुरुषार्थी रूप में शंकर का शरीर कहें, शरीर जो है 5 जड़ तत्वों से बनता है। क्या बनता है ना? तो वो साकार शरीर है वो पत्थर, जिसके लिए बाप कहते हैं मैं मुकर्रर रथ रूपी शरीर कहो देह कहो पत्थर का आधार लेता हूं। पत्थर भी मिट्टी से बनता है क्या? मिट्टी जब बहुत मिट्टी के कण इकट्ठे हो जाते हैं तो पत्थर जैसे कठोर बन जाते हैं, तो पत्थर कहा जाता है। तो सोमनाथ मंदिर में जो पत्थर था ये साबित होता है कि वो पत्थर के समान जो शरीर है उसकी यादगार है। क्या त्रिमूर्ति के चित्र में भी बाबा ने जो साक्षात्कार से बनवाया उसमें ब्रह्मा की मूर्ति पत्थर दिल थी या लचीली थी?
लचीली
है, लचीली थी, लीनेंसी स्वभाव था, कोमल स्वभाव था कि कड़क स्वभाव था पत्थर की तरह? है
कोमल स्वभाव,
है
कोमल स्वभाव,
कोमल स्वभाव था, कोमल स्वभाव था, इसीलिए तो सब बच्चों का सहन कर लिया। लेकिन शंकर को कैसे बैठाया हुआ दिखाया गया है? कैसी बैठक है?
कड़क,
जैसे पत्थर कड़क होता है ना, कौन सा पत्थर होता है बहुत कड़क होता है? है, अरे कोई पत्थर होता है, पत्थर अनेक प्रकार के होते हैं, ग्रेनाइट। कोई पहाड़ ऐसा है जो सारा का सारा पहाड़ नीचे से लेकर के ऊपर तक एक ही पत्थर का बना हुआ है और ग्रेनाइट पत्थर का बना हुआ है, वो कौन सा पहाड़ है? आबू का पहाड़, माउंट आबू। अब ब्रह्मा कुमारी अभी यही कहते हैं भगवान कहाँ आते हैं? माउंट आबू पहाड़ पे आते हैं। माने माउंट आबू पहाड़ ग्रेनाइट पत्थर पर आते हैं। कोई चैतन्य मनुष्य आत्मा में नहीं आते? चैतन्य मनुष्य आत्मा का आधार नहीं लेते हैं? तो पहाड़ का इसलिए पहाड़ पे क्यों आते हैं?
पहाड़ तो यादगार बना हुआ
है,
यादगार बना हुआ है पहाड़।
पहाड़ यादगार है माने दुनिया में और पहाड़ नहीं है जो ग्रेनाइट पत्थर के हैं? वहाँ ग्रेनाइट पत्थर नहीं मिलता? मिलता है कि नहीं है? लेकिन वो काला पत्थर ऐसा ग्रेनाइट कड़क पत्थर है आबू पहाड़, जो सभी दुनिया के पहाड़ों से सबसे जास्ती गहरा धरणी में घुसा हुआ है। क्या इतना गहरा फाउंडेशन है उसका? जिस मकान का जितना गहरा फाउंडेशन होता है, भूकंप आएंगे तो गहरे फाउंडेशन वाला मकान हिलेगा गिरेगा पहले या दूसरे मकान गिरेंगे हिलेंगे? हैं?
दूसरे मकान हिलेंगे।
जिनका फाउंडेशन पक्का नहीं होगा, गहरा नहीं होगा, वो गिरेंगे, और जो खूब गहरा होगा वो जल्दी गिरने वाला नहीं हो सकता। और आज के जो खगोल शास्त्री हैं, भूगर्भ शास्त्री, वो भी उन्होंने भी ये बात निकाली है कि दुनिया में एक ही पहाड़ है, आबू पहाड़, जो बड़े बड़े भूकंप आएंगे लेकिन वो पहाड़ हिलेगा नहीं, गिरेगा नहीं जल्दी। हो सकता है कि महाविनाश काल में भी वो स्थिर रहे, लेकिन सवाल ये है कि वो पहाड़ ही क्यों दिखाया? जड़ पहाड़ में आता है भगवान, गीता में भी लिखा है, मैं रथ का आधार लेता हूं। अर्जुन से क्या कहा? तेरे रथ में आता हूं कि तेरी आत्मा में आता हूं? है किसका आधार लेता हूं, आत्मा का या रथ का? रथ का आधार लेता हूं। और ये भी बोला अर्जुन से, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। हे अर्जुन, ये तेरा जो शरीर है ये दुनिया का सबसे बड़ा धर्म युद्ध का भूमि है, क्षेत्र है, और कर्म क्षेत्र भी है। जो पहले गीता में श्लोक आता है क्या है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, ये दुनिया का ये शरीर तेरा शरीर धर्म का क्षेत्र है और कर्म का क्षेत्र भी है। क्यों? दुनिया में जितने भी सर्वधर्मान परित्यज्य, हे अर्जुन सब धर्मों को त्याग दे, तो सब धर्म सतयुग में होते हैं कि त्रेता में होते हैं कि द्वापर में होते हैं कि कलयुग में होते हैं? कलयुग में सब धर्म होते हैं। इसका मतलब है कि भगवान कलयुग के अंत में इस सृष्टि पर आता है, जब इस सृष्टि पर सर्वधर्म इकट्ठे हो जाते हैं, उन सब धर्मों को त्याग दे, वो धर्म देह अभिमानी धर्म पिताओं के द्वारा स्थापन किए हुए धर्म हैं, इसलिए त्याग दे। क्या क्यों त्याग दे? उन धर्मों को क्यों त्याग दे है? क्योंकि वो सभी धर्म देह अभिमानी, जो जड़ देह है ना, पांच तत्वों का चोला, पांच तत्वों का संघात, जड़ प्रकृति का भले श्रेष्ठ नमूना भी है देवताओं का, और भ्रष्ट नमूना भी है जिसमें विकार और बीमारियां भरी पड़ी है। मनुष्य शरीर कलयुग के अंत में बेकारी हो जाते हैं, सब शरीर बीमार हो जाते हैं ना, शरीर के हर अंग से गंध निकलती है या देवताओं की तरह सुगंध निकलती है, है? दुर्गंध निकलती है, कचरा निकलता है। चलो जो भी हो, ये शरीर हूँ जो तेरा है वो धर्म युद्ध का क्षेत्र है। बड़े से बड़ा जो धर्म युद्ध कहा जाता है, महाभारी महाभारत युद्ध, और कर्म युद्ध का क्षेत्र है। उन धर्मों के आधार पर अनेक प्रकार के कर्म कांड रचे हुए हैं। जो धर्मों के गुरु मौलवी पंडित विद्वान आचार्य हैं, उन उन धर्मों के जो नेताएं हैं, धर्म नेता हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, बहुत वाद विवाद करते हैं। करते हैं कि नहीं? हिंदू कहेंगे नहीं, मृत्यु के बाद शरीर को जलाए देना चाहिए, ये भी कर्मकांड। मुसलमान अंग्रेज क्या कहते हैं? है? क्या कहते हैं शरीर के बारे में? मिट्टी में दबाए देना चाहिए। क्या क्या कहते हैं? मिट्टी में दबा दो, कब्र दाखिल कर दो। क्योंकि उनकी मान्यता है कि मनुष्य जब मरता है तो उसकी रूह कब्र दाखिल हो जाती है। क्या कहां दाखिल हो जाती? मिट्टी में मिल जाती है, कब्र दाखिल हो जाती है। खुदा आएगा जब कयामत होगी तो खुदा आएगा और जमीन दोज में जो आत्मा, जो मनुष्य आत्माएं जमीन दोज हो गई, उनको निकालेगा, जगाएगा। ऐसे कहते हैं, उनके धर्म ग्रंथों में भी लिखा हुआ है। तो उनके अंदर ये जो संस्कार भरा हुआ है, भावना भरी हुई है, ये भावना का फाउंडेशन कहां पड़ा था? कैसे? संगम युग में जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं, कलयुग के अंत सत्युग की आदि में सुप्रीम सोल गॉड फादर आते हैं, तो उस समय ये अलग अलग धर्मों की अलग अलग कर्मकांड की भावनाएं जो भरी पड़ी हैं, उनका फाउंडेशन कैसे पड़ता है? अरे हिंदुओं के अंदर ये भावना का फाउंडेशन कैसे पक्का हो गया कि नहीं भाई जलाना चाहिए, और मुसलमानों क्रिश्चियन सारे दूसरे धर्मों में विदेशियों में ये फाउंडेशन, ये भावना का कैसे पक्का हो गया? हिलते ही नहीं है। कहते नहीं, दफनाना चाहिए जमीन में। ये फाउंडेशन कैसे पड़ा है?
धर्मगुरुओं का देवान से वो फर्क दिखाने के लिए।
अच्छा चलो धर्मगुरुओं को छोड़ दो, उनके फॉलोअर्स को ले लो, धर्मगुरु धर्म पिताएं उनकी भावना को छोड़ दो, वो तो पिताएं हैं, बाप है। उनके जो फॉलोअर्स हैं उनमें भी ये भावना पक्की है या नहीं है? वो अपने धर्म ग्रंथ की बात को छोड़ करके हिंदुओं के धर्म ग्रंथ को पकड़ते हैं? पकड़ते हैं? नहीं पकड़ते। जो अपने धर्म के पक्के होते हैं, जो उन धर्म पिताओं के पीछे पीछे आत्मलोक से सृष्टि पर आते हैं, वो इतने पक्के होते हैं कभी किसी दूसरे धर्म के धर्म ग्रंथ को पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, सुनेंगे भी नहीं। ये सारी भावनाओं का फाउंडेशन संगम युग में जब भगवान बाप आते हैं, बताते हैं कि तुम बच्चे आत्मा हो, ज्योतिबिंदु, निराकार आत्मा, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देती, अविनाशी आत्मा, ज्योति स्वरूप आत्मा हो, जिस आत्मा की ज्योति इन आंखों से चमकती है। आंखों में चमक है ना? आंखों में चमक है या नहीं? किसकी चमक है? आत्मा की चमक। जब ये आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाती है तो आंखें बटन, ज्योति रहती है नहीं रहती? तो इस बात को दूसरे धर्म की आत्माएं जो परमधाम से दूसरे धर्म पिताओं के पीछे पीछे आती हैं, द्वैतवादी द्वापर युग से जिन्होंने द्वैतवाद फैलाया, नहीं तो भारत में एक धर्म था, उन्होंने आके दूसरा धर्म स्थापन कर दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, द्वैतवाद फैला दिया, दो दो राज्य स्थापन कर दिए, तीन तीन, चार चार राज्य दुनिया में हो गए, दो से चार, चार से आठ बढ़ते चले गए। पहले दुनिया में एक ही भाषा थी भारतवर्ष में, वो धर्म पिता है जब द्वापर से आए द्वैतवादी युग से, तो उन्होंने दो दो भाषाएं चालू कर दी, दो दो कुल, दो दो मते हैं। तो उन धर्म पिताओं ने जब भगवान इस सृष्टि पर आते हैं तो वो धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स और उन धर्म पिताओं फॉलोअर्स के धर्म में कन्वर्ट होने वाली भारत की आत्माएं, पक्का पक्का समझा क्या? वो धर्म पिताएं, उनको फॉलो करने वाले धर्म के फॉलोअर्स और उन धर्मों में कन्वर्ट होने वाली भारत की आत्माएं, क्योंकि भारतवासी दूसरे धर्मों में हिस्ट्री में कन्वर्ट हुए हैं, दूसरे विदेश के धर्म को फॉलो करने वाले कभी भी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए ही नहीं, हिस्ट्री देख लो उतार के। तो जो भारतवासी जन्म बाई जन्म कन्वर्ट होते रहे द्वैतवादी द्वापर युग से, वो भारतवासी, वो धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स जब भगवान बाप सुप्रीम सोल गॉड फादर इस सृष्टि पर आते हैं किसी मुकर्रर रथ में, तो वो मुगालते में पड़ जाते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। क्या? कि भगवान निराकार या भगवान साकार? क्योंकि जन्म जन्मांतर तो वो यही मानते रहे, क्या भगवान निराकार है, भगवान साकार होता ही नहीं। और अभी संगम युग में ये बात साबित होती है, जो भारत में मान्यता है, क्या सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। साकार और निराकार दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों ही संसार के दुख हरण करने वाले हैं। निराकार भी और साकार भी। तो जो आत्माएं भले भारतवासी थे सचिव त्रितंग, परंतु सतयुग में जन्म लेने के बावजूद भी वो ऐसे नारायण बनने वाले कमजोर आत्माओं में प्रवेश, कमजोर आत्माओं को फॉलो करने वाली आत्माएं हैं जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान को पूरा उठाया ही नहीं। जैसे ब्रह्मा ने, दादा लेखराज ने, और उनकी गोद में खेलने वाले कुख वंशावली ब्राह्मणों ने भी नहीं उठाया। जो कुख वंशावली ब्राह्मण नीची कुरियों के ब्राह्मण गाए गए शास्त्रों में, नौ कुरियों के ब्राह्मणों की मान्यता है शास्त्रों में, वो नीची कुरी के ब्राह्मण हैं जिन्होंने ऊंचते ऊंची सृष्टि पर कौन है मनुष्य, सारी मनुष्य सृष्टि का पिता, उसको पहचाना ही नहीं शुरुआत में, मध्य में भी नहीं पहचाना। जब विनाश एकदम सर के ऊपर आ जाता है, एटम बम फटने लगते हैं, तब उनका जागरण होता है। ऐसी कुंभकर्ण या काम कुंभकर्ण ही आत्माएं हैं, अज्ञान की नींद में सोने वाली, देह अहंकार में कुंभकर्ण के तो कैसा होता है, मोटा ताजा लंबा चौड़ा, देह ही देह दिखाई पड़ती है, देह अभिमान में देह अहंकार में चूर बन करके रहते हैं। कौन है कौन है वो कुंभकर्ण? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, उनके फॉलोअर्स, धर्म पिताएं, और उन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स, और साथ साथ उनके धर्मों में कन्वर्ट होने वाले भारतवासी आत्माएं जो कम कलाओं के देवता बनते हैं। सतयुग में पहली पीढ़ी में 16 कला संपूर्ण होंगे, उसके बाद दूसरा से लेके आठवां नारायण उनकी कलाएं कम होती जाएंगी या 16 कला संपूर्ण बने रहेंगे? हैं? कम होती जाएंगी। तो वो कम कलाओं वाले नारायणों की पूजा नहीं होती, उन सात नारायणों के मंदिर नहीं बनते, उनकी मूर्तियां नहीं बनती, उनके देवालय भी नहीं बनते, सिर्फ सप्तऋषियों के रूप में गाए जाते हैं। क्या शरीर से पवित्रता का तो पालन किया, खासकर कामेंद्रिय के द्वारा, नंबर वार संपूर्ण नहीं, वो सात नारायण जो संगम युग में नीची कुरी के ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा की औलाद, मुखवंशावली या मुखवंशावली ब्राह्मण बने है? कुखवंशा, कुख माने गोद, उनको गोद का बड़ा नशा रहता है। क्या कोई शिव बाबा का बच्चा जो शिव बाबा से सन्मुख बैठ करके ज्ञान सुनने वाला हो उसको भी गुरुर गुरुर करके बोलेंगे, अरे तुम कल के बच्चे ज्ञान में आए हो, तुम क्या हमको ज्ञान सुनाओगे, हमने मम्मा बाबा की गोद ली है, हम तुम्हारी बातों में आने वाले नहीं। ऐसे अनुभव किया या नहीं किया?
किया।
तो उनको मुखवंशावली कहें या मुखवंशावली कहें? वो कुखवंशावली ब्राह्मण दादा लेखराज ब्रह्मा की गोद का प्यार लेने वाले हैं, मुख से निकला हुआ जो ज्ञान है गीता ज्ञान उसको समझने वाले नहीं है। तो कौन से ऊंचे ब्राह्मण हुए जिन्होंने ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ गीता ज्ञान या वेदवाणी को गहराई से समझा, दूसरों को समझाया, वो ऊंचे ब्राह्मण हुए या जिनको गोद का नशा है कि हमने मम्मा बाबा की गोद ली है, मुख से निकली हुई ईश्वर की वाणी को नहीं समझा, अभी भी नहीं समझ रहे हैं और उनकी संख्या बहुत है, क्योंकि नीची कुरी के ब्राह्मण चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी और उनके फॉलोअर्स धर्म पिताएं, उनको फॉलो करने वाले वो देवताएं जो सतयुग में नारायण थे, सतयुग की 8 पीढ़ियों में नीची कुरी के नारायण बने, कम कलाओं वाले नारायण बने। क्यों कम कलाओं वाले नारायण बने, क्या कारण हुआ? अरे बताओ भाई, अरे क्योंकि उन्होंने जो सुप्रीम सोल गॉड फादर शिव है निराकार, उसकी वाणी को कान में धारण नहीं किया, बुद्धि से समझने की कोशिश नहीं की और दूसरों को समझाया भी नहीं। वो कम ज्ञान उठाने वाली आत्माएं कम कला के नारायण बन जाते हैं और उनको फॉलो करने वाले जो भी प्रजा है सतयुग में वो सब कम कलाओं वाली प्रजा बनती है। यथा राजा तथा तथा प्रजा, ये कमजोरी रह जाने के कारण वो देवात्माएं होते हुए भी नाम मात्र के कम कलाओं वाले द्वैतवादी द्वापर युग से जब धर्म पिताएं उतरते हैं तो उनके प्रभाव में आ जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। क्यों प्रभावित हो जाते? क्योंकि उन्होंने संगम युग में शूटिंग ही ऐसी की है, ऐसी रिहर्सल की है अनिश्चय बुद्धि बनने की, कि एक बार जिसको बाप मान लिया और सारी दुनिया के सामने ढिंडोरा भी पीटा, हमें भगवान बाप मिल गया, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत मिल गया। खून से भी लिख करके दिया, स्टाम्प पेपर पर एफिडेविट शपथ पत्र लिख करके दे दिया। और बाबा कहते हैं, बाबा तो ब्रह्मा मुख से यहां तक कहते हैं कोर्ट में जाके एग्रीमेंट लिख दो, क्या कि हमने भगवान बाप को पहचान लिया एवरलास्टिंग, अब हम कभी उसे छोड़ने वाले नहीं है, अनिश्चय बुद्धि होने वाले नहीं है। यहां तक बोल दिया मुरली में, फिर भी उस एक से सुन करके अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। दूसरों की बात कान से सुनने लग पड़ते हैं, कान से सुनी हुई ज्ञानी की बातों को धारण कर लेते हैं। हाँ, ये बात तो ठीक है, आपने कही, ये हम भी सोचते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे, अब हमें पक्का समझ में, माने उसको अपना बाप बना लिया, कन्वर्ट हो गए। शूटिंग यहां करते हैं, रिहर्सल यहां करते हैं अनिश्चय बुद्धि होने की, दूसरों से यहां सुनते हैं, कोई कोई तो दो दो बार, तीन तीन बार, चार चार बार अनिश्चय बुद्धि बनते हैं, दूसरों की बातें सुन लग पड़ते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। वो ही आत्माएं जो अनेकों से ज्ञान सुनती हैं, विचारी ज्ञानी बनती हैं, वो द्वापर युग से दूसरे धर्मों में क्या होता है, कन्वर्ट होती रहती है। दूसरे धर्मों, धर्म पिताओं, धर्म के फॉलोअर्स से प्रभावित होकर उनकी प्रजा बनती रहती है। तो वो सारे ही नारायण सत्युग के और उनकी प्रजा कहां तैयार हो रही है, है? है? कहां तैयार हो रही है, है?
अभी संगम युग में इसी ब्राह्मण परिवार में, ब्राह्मण की दुनिया में बेसिक परिवार में तैयार
हो रही है, बेसिक में तैयार हो रही है, माने एडवांस परिवार में प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के बीच में नहीं है, उनके बीज नहीं है,
उनके बाप नहीं है,
बीज माने बाप, माना चाहे एडवांस का ब्राह्मण परिवार हो, चाहे बेसिक नॉलेज लेने वालों का ब्राह्मण परिवार हो, दोनों में ही ऐसे अनिश्चय बुद्धि बनने वाली आत्माएं हैं जो दूसरों का ज्ञान सुनने लग पड़ती है। एक बार अंजाम कर लेते हैं संसार के सामने, ढिंढोरा पीटते हैं, भगवान आया हुआ है, हमने भगवान को पहचाना है, आप हमसे आके सुनो, और फिर भी अनिश्चय बुद्धि हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष में अभी अनिश्चय बुद्धि देखने में नहीं आते, लेकिन अंदर अंदर संकल्प चलते हैं, पता नहीं भगवान है कि शैतान है।
दूसरे दूसरे से ज्ञान का सुनते हैं, लेकिन उनके ज्ञान में अगर निश्चय नहीं बैठता है तो,
हाँ निश्चय नहीं बैठता है, लेकिन बाबा ने तो सुनने की बात की। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होय पाप गौ घात समाना। क्या सदगुरु जिसको मान लिया कि यही एक सुप्रीम टीचर है, यही स्वरूप हमारा गुरु है, यही हमारा पिता है, क्या मनुष्य सृष्टि में ऊंचते ऊंच पिता यही है, ऊंचते ऊंच साकार भगवान, गीता का साकार भगवान यही है, दादा लेखराज ब्रह्मा नहीं है, मान लिया फिर अंदर में इच्छा ही क्यों हो दूसरे धर्म वालों से दूसरों की बातें सुनने की? क्यों इच्छा होनी चाहिए?
अब इच्छा न होते हुए भी सुनाते हैं गुरु लोग।
तड़क जाओ, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। हम आपकी बातों में विश्वास करने वाले नहीं। जैसे अभी भी ब्रह्मा कुमार हैं ऐसे अड़ियल, तुम रोज जाके उनको ज्ञान सुनाओ, ऐसे भी करेंगे सही है, लेकिन हम मानने वाले जब तक हमारी कुमारका दादी नहीं मानेंगी, हमारे जगदीश भाई नहीं मानेंगे, हमारे रमेश भाई नहीं मानेंगे, तब तक हम तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानने वाले। मुंह पे बोल देते कि नहीं
है? कोई बोलते हैं जब तक छोटी मम्मी नहीं आएगी तब तक हम नहीं मानेंगे।
बाप के ऊपर निश्चय पक्का हो गया
किसका?
जो बोलते हैं कि छोटी मम्मी नहीं आएगी तब तक नहीं मानेंगे।
हाँ वही बोलते हैं, छोटी मम्मी मानेंगे तब हम भी मानेंगे।
तो इसका मतलब ये हुआ कि बाप के बच्चे हैं या सिर्फ मम्मी के बच्चे हैं?
मम्मी के बच्चे सारे।
और वो मम्मी अभी ज्ञानी है या अज्ञानी?
तो अंधेरे में
है।
ज्ञान अंधेरे में।
अंधी है कि सोझरी है? ज्ञान सागर के सबसे नजदीक रहने वाला जो अंधरा प्रदेश है, आंध्र प्रदेश, अंधरों के प्रदेश की है या सोजरों के प्रदेश की है? किनके साथ रहती है?
अंधेरे में रहती।
तो देखो जिस आंध्र प्रदेश में इतने तूफान आते हैं, उस अंधेरे में धक्के खा रही है और उसी के लिए बोलते हैं वो आएगी तब हम मानेंगे। अभी हम नहीं मानेंगे। तो एक ऊंचते ऊंच साकार मनुष्यात्मा कहो या साकार देवात्मा कहो, उसके बच्चे हैं या सिर्फ माता के बच्चे
हैं? तो माता के बच्चे सारी
जगह। ऊंचते ऊंच परम ब्रह्म के बच्चे हैं, ऊंचते ऊंच परम माने परे ते परे ब्रह्मा जो है उसके बच्चे हैं, या नंबर दो की अम्मा, नंबर तीन की अम्मा, नंबर चार की अम्मा के बच्चे हैं?
ऊंचते ऊंच तो अभी पहचान ही नहीं मिली
है।
ऊंचते ऊंच तो वो अभी जानते ही नहीं।
माने अभी आप नहीं जानते ऊंचते?
वो जो छोटी मम्मी जो जहाँ रहती है, छोटी मम्मी के बाद में जो आने वाले हैं वो अभी परम ब्रह्म को नहीं जानते हैं ना।
तो परिचय दे दो ना।
तो अभी मानते ही नहीं।
मानते ही नहीं है तो समझ लो तुम्हारे कुल के हैं या सौतेली माँ के बच्चे हैं?
सौतेली शादी हो
है?
सौतेली,
सौतेली माँ के बच्चे हुए या मातेले बच्चे हुए? भारत में भी जो पहली शादी की जाती है वो माता ऊंची मानी जाती है, या दूसरी बार जो शादी की जाती है, तीसरी बार की जाती है, चौथी बार भी कोई शादी करते हैं, जो बाबा ने मुरलियों बोला भारत में पुरुष की एक स्त्री गई तो कहते हैं एक जूती गई दूसरी लेते हैं, दूसरी गई तीसरी लेते हैं, तीसरी गई चौथी लेते हैं, चार चार शादियां भी कर लेते हैं। तो कौन सी माता के बच्चे को बाप वर्षा देता है? पहली वाली माता के बच्चे को बाप भी वर्षा देता है, और भारत में भी अभी परंपरा है पहली माता का जो बच्चा है वो ज्येष्ठ पुत्र माना जाता है परिवार में, उसकी मान्यता सबसे जास्ती होती है। ये परंपराएं कहां से शुरू हुई है? संगम में, इसीलिए गीता में कहा गया ये गीता में भी। हाँ
हिस्ट्री में कभी कभी ऐसा हुआ है जो राजाओं ने दो तीन शादी करके दो तीन रानियां रखी है, उनमें पहले रानी से पहले बच्चा नहीं हुआ, दूसरी रानी से।
एक बात बताओ, जिसके पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे हैं कि वो नपुंसक है, औरत या आदमी, क्या साबित हुई? अरे बताओ, दोनों में से स्त्री या पुरुष दोनों में से नपुंसक हैं या सही अर्थों में माता पिता है
नपुंसक बाबा से
तो नहीं, नहीं। पूर्व जन्म के अच्छे कर्म हैं या गंदे कर्म हैं?
तो गंदे कर्म के रिजल्ट है,
है?
गंदे कर्म का रिजल्ट।
हाँ, गंदे कर्म ऐसे किए हैं, विभिचारी कर्म ऐसे किए हैं कि पुरुष रूप में भी नपुंसक बने अथवा स्त्री रूप में नपुंसक बने, तो ये पूर्व जन्मों का जिस आत्मा का ऐसा हिसाब किताब है वो आत्मा श्रेष्ठ है नहीं? तो आप तो छोटी मम्मी की बात कर रहे थे, छोटी मम्मी को उस श्रेणी में अभी डालने लगे?
नहीं नहीं, हाँ इसलिए राजाओं के साथ हुआ कि
वो आपने दुनियावी राजाओं का मिसाल दिया, लेकिन मोस्टली क्या होता है?
मोस्टली तो बड़ी रानी से जो बच्चे पैदा होते हैं उनको ही वर्षा देते हैं।
वर्षा देते हैं, तो देखो ये सारी दुनिया की जितने खास भारत वर्ष में जितनी भी परंपराएं भक्ति मार्ग में चल रही हैं, भले स्थूल रूप में वो परंपराएं उठाई गईं, लेकिन उनका गहरा अर्थ है, वो गहरा अर्थ, वो फाउंडेशन भगवान बाप ने आकर के डाला है। भगवान बाप जब आते हैं तो बताते हैं कि तुम आत्मा ज्योतिबिंदु हो, आत्मा अविनाशी हो, इसलिए अविनाशी आत्मा देहधारियों के संबंध संपर्क में आते आते नीचे गिर गई, इसलिए जो अविनाशी आत्मा है जब निकल जाए तो शरीर विनाशी तत्वों का पुतला रह गया। इस पुतले को, जड़ पुतले को, पांच तत्व के पुतलों को पांच तत्वों में जला करके मिला देना चाहिए या गाढ़ना चाहिए? तो यहाँ योगाग्नि में जलाने की बात कही बाबा ने, न कि शरीर के पांच तत्वों को, मुर्दे को जमीन में गाढ़ने से भला होगा। जमीन में गंदगी फैलेगी या नहीं फैलेगी, हैं? और जला देंगे तो राख हो गया। इसलिए बोला, अव्यक्त वाणी में बोला, अब देखेंगे कोटों में से एक, लाखों में से, पुरुषार्थियों में से एक कौन निकलते हैं और कौन राख बनते हैं। योगाग्नि में अपने देह अभिमान को जला करके, देह अभिमान को भस्म करके कौन राख बनते हैं वो भी देखेंगे। तो ये जलाने की परंपरा, ज्ञान मार्ग के हिसाब से योगाग्नि में जलाने की बात है और भक्ति मार्ग के हिसाब से स्थूल बात उन्होंने उठा ली। क्या क्या जला दिया? देह को जला दिया। देह को जला देने से आत्मा के अंदर जो जन्म जन्मांतर का देह अभिमान भर गया है, संग का रंग का, वो खत्म हो जाएगा?
तो अग्नि से जलता ही नहीं,
वो तो खत्म होने वाला नहीं,
तो अग्नि से जलता नहीं।
तो अब पता चलता है कि इस मनुष्य सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष में जो पहला पत्ता है राधा कृष्ण जिन्हें कहा जाता है, 16 कला संपूर्ण, उनकी पूजा होती है, दूसरे नारायणों की पूजा, सात नारायणों की पूजा, मंदिर मूर्तियां नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती? क्योंकि वो कम ज्ञान उठाने वाली आत्माएं कमजोर रह जाने के कारण कम कलाओं की बनती हैं, और द्वैतवादी द्वापर युग आने से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। वो ही कन्वर्ट हुई आत्माएं। भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो फिर उन बच्चों को इकट्ठा करते हैं भारत में। तो वो नौकुरियों के ब्राह्मण हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक में भी हैं और एडवांस में भी हैं। तो वो आत्माएं और उनके जो मुखिया हैं या उनको समझा करके कन्वर्ट करने वाले हैं अपने मत के अनुसार, वो ऊंचे से ऊंचे बनेंगे?
कन्वर्ट होने वाले
हैं जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे, दूसरों की बातों के प्रभाव में आते रहे, भगवान बाप को पहचान करके भी, अंजाम करके भी, और एफिडेविट लिखने के बावजूद भी, और क्या नाम ये यज्ञ के आदि में खून से लिख करके देने के बावजूद भी कन्वर्ट होते गए, वो आत्माएं कच्ची कन्वर्ट होने वाली कम कला की आत्माएं हैं या 16 कला संपूर्ण आत्माएं हैं?
कम कला
की आत्माएं। और जो 16 कला का संपूर्ण आत्मा है जिन्हें बाबा ने कहा श्रेष्ठ, श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ नहीं कहा, क्या कहा?
श्रेष्ठ,
राधा कृष्ण जैसी आत्माएं, सतयुग के फर्स्ट पीढ़ी में आने वाली आत्माएं, वो श्रेष्ठ तो हैं। 16 कला संपूर्ण देवताएं, 16 कला संपूर्ण को ही देवता कहा जाता है पक्का, बाकी तो कच्चे देवताएं, वो श्रेष्ठ थे, श्रेष्ठ नहीं है। क्या कहा? उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? है हाँ, संगम युग में वो आत्माएं। तुम्हें अपनी बातों से नहीं फुर्सत है जी, इशारों पे इशारे हैं, दूसरे की बात सुनेंगे ही नहीं। हाँ, तुम अपनी सुनाओ। अब उन्हें उनको भी जन्म देने वाले जो सतयुग में पहली पीढ़ी में राधा कृष्ण जैसी आत्माएं उनको फॉलो करने वाले यथा राजा तथा प्रजा आत्माएं श्रेष्ठ तो हैं, लेकिन श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ नहीं है। तो वो कौन है? वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ क्यों नहीं है? कोई कारण तो होगा ना। कारण लक्ष्मी नारायण के चित्र में दिखा दिया है, साक्षात्कार से जो बनाए हैं, बनवाए हैं भगवान ने जो चित्र ब्रह्मा बाबा के टाइम पर, नहीं ध्यान से देखा कभी? हैं? क्या देखा?
हाँ,
जो राधा कृष्ण है सतयुग की पहली पीढ़ी में वो आँखों का रस ले रहे हैं। क्या? आँखों का रस ले रहे हैं। आँख भी ज्ञान इंद्रियों में श्रेष्ठ इंद्रिय तो है। क्या? लेकिन देह का अंग है या नहीं है? विनाशी देह का अंग है या नहीं है? तो विनाशी देह का रस लेने वाले नीचे गिरेंगे, विनाश को प्राप्त हो जाएंगे या अविनाशी रहेंगे? इसलिए अगले जन्म में उनकी कला 15-16 कला ही रह जाएगी, उससे ज्यादा नहीं। और फिर जन्म जन्मांतर नीचे ही उतरते रहेंगे, वो आत्मा विनाश की स्टेज को ही पाती रहेगी। जो सृष्टि के आदि में विष्णु का रूप है, परम पद क्या है? हैं? विष्णु रूप, वो परम पद नहीं पा सकते। ऊंचे ते ऊंचा जिसे कहा जाता है, ऊंचे ते ऊंचा भगवान नहीं कहे जा सकते। क्यों क्यों नहीं कहे जा सकते?
इसी संबंधी जन्म में जो बाबा ने पढ़ाई का लक्ष्य दिया है वो प्राप्त नहीं कर सकते, जैसे नारायण बनना नारायण से लक्ष्य बनना।
क्यों नहीं प्राप्त कर सके?
वो तो शरीर छोड़ करके फिर माँ बाप के द्वारा फायदे होते हैं, माँ बाप से वर्षा मिलता है उनको।
नहीं, वो वर्षा तो मिलता है, श्रेष्ठ वर्षा मिलता है, लेकिन श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ धर्म में क्यों नहीं गए?
संगम जी ने लक्ष्य को नहीं प्राप्त किया ना, जो बाबा ने लक्ष्य दिया।
क्या लक्ष्य?
लक्ष्य डायरेक्ट नारायण।
क्यों नहीं प्राप्त किया?
बाप का ही पहचान नहीं मिली।
हाँ, वो बाप की पहचान को नकारते रहेंगे। क्या? जैसे संक्षत्तर में घोषणा की थी, पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होगी। घोषणा की थी ना मुरली में, तो ब्राह्मणों की दुनिया की बात थी या बाहर की दुनिया की बात थी? ब्राह्मणों की दुनिया में विनाश हुआ, विघटन हुआ शुरू। क्या नई बातें निकल पड़ी एडवांस की? उन एडवांस की नई बातों को उन कम कला वाले ब्राह्मणों ने माना नहीं, सुनना भी पसंद नहीं, समझना तो दूर की बात। इसलिए उनमें भी नंबर वार हैं जो ब्रह्मा की गोद में खेलते रहे, अभी भी ब्रह्मा को ही साकार भगवान मानते हैं, गीता का साकार गीतापति भगवान मानते हैं, जबकि भगवान की मुरली वेदवाणी कहती है कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। तो भी दादा लेखराज जो कृष्ण की आत्मा है उसको गीता का भगवान गीतापति मानते हैं, किसी अन्य पुरुष मात्र को वो गीता का भगवान बिल्कुल मानने के लिए तैयारी, और मानेंगे ही नहीं। कब तक? जब तक पूरी राजधानी स्थापन नहीं हो जाएगी। क्या 76 में तो सिर्फ दो ही प्रत्यक्ष हुए? क्या एक युगल प्रत्यक्ष हुआ विजयमाला का, एक मण का, कंबाइंड मण का जिसे कहते हैं, वो प्रत्यक्ष हुआ। अभी तो बाबा ने बता दिया कि तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं, तो वो तुम बच्चों की लिस्ट में कितने बच्चे होंगे जिनको 40 वर्ष के लगभग लगते हैं?
16,108
पूरा राज परिवार निकल पड़ेगा। 76 में सिर्फ एक युगल की प्रत्यक्षता हुई युगल बनके की।
40 से 50 साल के बाद भी तैयार नहीं होंगे? 16
आप 40 बोल रहे हैं कि 50 बोल रहे हैं 16,000 के लिए?
नहीं, 16,000 के लिए तो 50 ही होगा।
घड़ी घड़ी बात बदलते, पैंतरा बदलते रहे, जैसे पहलवान होते हैं ना, अखाड़े में लड़ाई लड़ते हैं तो ये कदम आगे बढ़ाया, दूसरा कदम आगे बढ़ा दिए।
नहीं, वो तो समझ से नहीं बोल दिया ना बाबा।
तो क्यों बोल देते हो? सोच समझ के बोलो ना, सभा में बैठे हुए हो।
नहीं तो
सभा में लोग तुमको ज्ञानी या अज्ञानी साबित कर देंगे।
40 से 50।
अरे वीडियो में आ रहा है
40 साल तो वो
श्रेष्ठ थे श्रेष्ठ आत्माओं के लिए।
तुम बच्चे कहते हैं,
तुम बच्चे तो ज्यादा होंगे ना, तो कितने होंगे?
8 ही होंगे।
हाँ, जो पास विदानर होते हैं। क्या पास विद ऑनर? धर्मराज भी उनको ऑनर देगा, रिस्पेक्ट देगा। वो धर्मराज की नजरों में भी अंश मात्र भी नीचे नहीं, भले माया उनको खा जाती है कुछ न कुछ समय के लिए, फिर भी इतनी श्रेष्ठ आत्मा है, इतनी श्रेष्ठ आत्मा है कि जो नई दुनिया की राजधानी का 100% पक्का फाउंडेशन डाल देती है। जिस ब्राह्मणों के संगठन के लिए बाबा ने बोला ये ब्राह्मणों का संगठन, ब्राह्मण का परिवार ऐसा बन जावेगा जिसमें कोई भी भिखारी पांव नहीं रख सकेगा। जब पांव ही नहीं रख सकेगा तो कन्वर्ट करेगा है? कन्वर्ट ही नहीं कर सकता। और अभी
तो पांव रख देते हैं।
तो जो नई दुनिया का पहला संगठन तैयार होगा, अव्वल नंबर संगठन, अव्वल नंबर राजधानी, वो राजधानी 100% पक्की राजधानी होनी चाहिए या अंश मात्र भी कच्ची राजधानी होनी चाहिए? है 100% पक्की राजधानी। ऐसी पक्की राजधानी जिस राजधानी को इस दुनिया में कोई भी ताकत, चाहे बेसिक ब्राह्मणों की ताकत हो, चाहे एडवांस ब्राह्मणों की ताकत हो, चाहे दुनिया के धर्म नेताओं की ताकत हो, पोप जैसे, अंग्रेजों का सबसे बड़ा धर्म का गुरु कौन माना जाता है? पोप। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा धर्म नेता हो किसी भी धर्म का, और राज्य नेता भी, दुनिया में बड़े बड़े राज्य चल रहे हैं कि नहीं है? महाशक्तियां कही जाती हैं कि नहीं? वो महाशक्तियां भी टक्कर मारती रहेंगी। जैसे बेसिक वाले ब्राह्मण जिनको नशा है कुख वंशावली बनने का, ब्रह्मा की गोद का जिनको नशा है, वो टक्कर मार मार के थक गए 76 से लेकर अब तक भी, और आगे भी टक्कर मारेंगे, प्लानिंग बनाए रहे हैं, कहते हुए भी देखे जाते हैं। जो हालत तुम्हारे बाबा की है, महीनों जेल में डाल करके सड़ाया है, वही हालत हर तुम्हारे मिनी मधुबन के जो मुखिया हैं, उनकी भी वही हालत करके छोड़ेंगे। हर साल प्लान बनाते हैं और हिम्मत नहीं पड़ती।
मिनी मधुबन के मुखिया मैंने कौन बा?
अरे मिनी मधुबन में आमने सामने मुखिया नहीं देखने में आते हैं, बाप तो गुप्त हो गया, उनको देखने में आता है? हैं? उनकी नजरों में है? बाप तो कहते हैं मैं तो बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। क्या जो चच्चे बनकर ही बैठे हैं, बाबा के परिवार में ही धर्मगुरु बनकर के बैठे हैं, दूसरों के ऊपर अपना आर्डर चलाते हैं, उनके सामने प्रत्यक्ष होऊंगा? जो अंदर से एक और बाहर से दूसरे हैं। मुख में राम बगल में छुरी, मिल जाए राम तो भोंक दे। तो बाप कहते हैं जो अंदर में एक और बाहर में दूसरा है, ऐसा मेरे नजदीक भी नहीं आ सकता। क्या
नजदीक नहीं आ
सकता? हाँ जी
बाबा, यह नजदीक का अर्थ अभी दूसरा जो अर्थ होते हैं, एक तो शरीर से सामने नजदीक, एक तो दिल से नजदीक।
बाप कहते हैं मेरे अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है, किसी को पता ही नहीं चलता कि अंदर का प्यार है या बाहर का प्यार है। तो नजदीक का मतलब दिल के नजदीक, दिल पर चढ़े हुए, दिल तख्त पर बैठे हुए, या बाहर से दुनिया वालों को दिखाई पड़ता है कि बाबा इनको बड़ा रिस्पेक्ट देते हैं, जैसे ब्रह्मा मुख से मुरली में बोलते थे। इन सभी सितारों में सबसे जास्ती खातरी होती है कुमारका की। बोलते थे कि नहीं है? बोलते थे, अंदर से समझते हैं, और मुरली में बोलते भी थे। कोई पूर्व जन्म की वैश्या है, इस जन्म में आकर भले ब्राह्मण बन जाए तो भी अंत में वो वैश्याओं के ग्रुप में ही चली जाएगी। दुनिया के बड़े से बड़े वैश्य हैं इस्लामी विशेष।
बाबा उनको फिर अंत में वही पहुंचाता है, उनका कर्म कहानी संस्कार ले जाती है या
है?
उनके संस्कार ही उनको वहाँ पहुंचाती है।
अरे चातुर्वर्ण्यम मया सस्तम, गुण कर्म स्वभाव। अभी सिलेक्शन हो रहा है, अव्वल नंबर में जाने वाले हैं ग्रुप में, द्वयम नंबर में जाने वाले हैं, विशेष वैश्य बनने वाले हैं या शूद्र बनने वाले हैं। अभी अभी संगम युग में गुण कर्म और स्वभाव के आधार पर ये चयन हो रहा है, और अब प्रत्यक्षता होने वाली है। बोला है अंत में कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जिसकी छुपी हुई बातों की संसार में प्रत्यक्षता ना हो जाए। कुछ भी किसी का गुप्त नहीं रहेगा। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया? जो बोला है अपना पूरा पोता मिल देने वाला कोई कोटों में एक है, तो बाकी सब नंबरवार हुए ना? हैं? तो नंबर एक जो है उसके फॉलोअर्स का भी ग्रुप है जो बताया। ऊंचे से ऊंचे धर्म है ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण सो देवता। उसके बाद दूसरा नंबर है फेलियर, क्षत्रिय धर्म। फेलियर तो है परंतु फिर भी प्रभु का कार्य करने वाले हैं। प्रभु का कार्य संपन्न करके ही शरीर छोड़ेंगे, वो क्षत्रिय। राम जैसी सूर्यवंशी आत्मा है। भगवान का क्या कार्य है? नई राजधानी की स्थापना, नई राजधानी के संगठन में जो ब्राह्मण आए उनकी पालना, और बाकी सबका बाकी सबका विनाश। ये विनाश का काम करने वाले मेरे रुद्र वत्स हैं, जिनके नाम पर रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा जाता है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होने वाली है, एक रुद्र को छोड़ करके। रुद्र माने रौद्र रूप धारण करने वाला, सारी दुनिया के लिए विकराल भयंकर रूप धारण करने वाला।
बाबा वो रुद्र वस्तु में कौन आते हैं?
बीज रूपात में,
बीज रूपात में
108 मन के रुद्रमाला के।
वो किस तरह से विनाश करेंगे?
हैं?
किस तरह से विनाश करेंगे?
धर्म कितने हैं?
नास्तिक को मिलाकर 10 नहीं तो 9 है।
वो धर्म है कि अधर्म है?
अधर्म है।
वो तो टोटल 100% अधर्म है,
नहीं तो 9 धर्म है।
9 धर्म है। तो 9 धर्मों के बीज डालने वाले कोई होंगे कि नहीं पिता है? जो है मूल बीज वो ही 9 रत्न है। उनमें से अष्टदेव भी चुने हुए, वो अष्टदेव अब प्रत्यक्ष होने वाले। जो बोला था संक्षेत्र के लिए, नई दुनिया की स्थापना होगी, पुरानी दुनिया का विनाश होगा और टू लेट का बोर्ड लग जाएगा। क्या जिनका प्रत्यक्षता रूपी जन्म होगा उनके सिवाय कोई भी नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी नहीं बन सकेगा, बाकी सब टू लेट हो गए। ऐसे ही अब 40 साल पूरे होने वाले हैं, पहले भी 40 साल पूरे हुए थे ब्रह्मा के, अब फिर 40 साल पूरे होने वाले हैं। अभी फिर टू लेट का बोर्ड लगेगा, दूसरी बार फिर प्रत्यक्षता होगी। 8 प्रत्यक्ष होंगे अष्टदेव, जो जगत पिता के सर के ऊपर 8 मण के दिखाए जाते हैं। दिखाए जाते हैं कि नहीं? वो प्रत्यक्षता होने वाली है, लेकिन संक्षेत्र में जो प्रत्यक्षता हुई थी, कितनों के लिए प्रत्यक्षता हुई थी? संक्षेत्र में और संपूर्णता वर्ष 77 तक भी कितनों ने पहचाना था? उन नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाले मणकों को किनके सामने प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ कोई ने जाना है? जाना कि नहीं जाना? अरे अरे हिंदी सीखो ना जल्दी जल्दी
बाबा।
हाँ,
नौ धर्म में
हाँ
हिस्टोरी तो मिलता जुलता है, बोलते
हैं
नौ धर्म में
हाँ
हिस्टोरी तो मिलता जुलता है, बोलते
क्या क्या कह रहे विष्णु क्या करें?
नौ धर्म में हिस्ट्री मिलता जुलता है।
नौ धर्म में हिस्ट्री मिलता जुलता है, हिस्ट्री मिलता जुलता है,
हिस्ट्री या हिस्टोरी?
हिस्टोरी, हिस्टोरी,
हिस्ट्री मिलता जुलता है। कहाँ मिलता जुलता है? उन धर्मों में, विदेशी धर्मों में दफना रहे हैं। हिस्ट्री देख लो शुरुआत से मुर्दे को, और हमारे सत्य सनातन धर्म में जला रहे हैं मुर्दे को। सब में समानता कहाँ है? ऐसी कर्म कांडों में ढेर सारी असमानताएं हैं जो अज्ञानता के कारण है। सब धर्म मिलकर के एक नहीं हो सकते, एक सब धर्म है, सत्य माने सच्चा धर्म है और बाकी सब झूठे धर्म है। एक सत धर्म में सतगुरु है, सच्ची सच्ची 100% सदगति देने वाला, माने पूरे 84 जन्म देने वाला सतगुरु। और जो धर्म है उन धर्म पिताओं के संग के रंग में आने से सच्चे रहते ही नहीं, झूठ को स्वीकार कर लेते हैं। झूठे धर्म पिताओं को अपना बाप मान लेते हैं। शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो बात चल रही थी ऊंचे ते ऊंचे भगवंत की। ऊंचे ते ऊंचा इस दुनिया में होता है, साकार दुनिया में ऊंचे और नीचे होता है, या निराकार दुनिया में ऊंचे नीचे होता है? साकार दुनिया में ऊंचे और नीचे होता है। ऊंचे ते ऊंचा भगवंत जिसे कहा जाता है, उसको गीता में भी उसका वर्णन है। और गीता सबके पास पहुंची कि नहीं पहुंची? पहुंच तो गई, लेकिन दिल नहीं लग रहा है उसमें। उसमें एक श्लोक आया है, वहां बताया गया है कि दो प्रकार की आत्माएं दुनिया में हैं सामान्यतः, क्षर क्षरित होने वाली, नष्ट होने वाली, शक्ति छीन करने वाली क्षरित आत्माएं, और एक है अक्षर। आ माने नहीं, क्षर माने क्षरित नहीं होती। लेकिन तीसरी एक और है, जिसके लिए गीता में बोला है परमात्मा इति उदाहरण, जिसे परमात्मा कहा जाता है। क्या? आत्माओं के बीच में कैसा पार्ट बजाने वाली? परम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी, जिसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में पत्थर के लिंग में हीरा दिखाया गया। वो हीरा शिव की यादगार हो सकती है या नहीं हो सकती है? हैं? हो सकती है। हीरा पत्थर होता है, हीरा पत्थर होता है या चैतन्य बुद्धि होता है? हैं? जितने भी नवरत्न हैं,
बाबा वाले कीमत हीरा है, फिर भी पत्थर है।
पत्थर है ना, और शिव पत्थर बुद्धि बनता है? बनता है? शिव तो पत्थर बुद्धि बनता ही नहीं, न वो पारस बुद्धि बनता है। अगर कोई कहे कि पारस बुद्धि बनता है तो सवाल होता है कब बना और किसने बनाया? वो तो सदा शिव है, वो बनता नहीं है, उसे बनाने वाला कोई है नहीं। ये ड्रामा में नूद है उस आत्मा के लिए।
बाबा अभी तक वो शिवलिंग में, सोमनाथ की शिवलिंग में जो हीरा दिखाया था, वो तो अभी तक हमारे समझ में ना, ऊपर वाले ज्योति जो शिव है उनकी यादगार।
तुम्हारे अकेले की समझ में, सारे ब्रह्मा कुमार कुमारियों की बुद्धि में। इसीलिए तो बाप कहते हैं दुनिया की टिक टिक करते रहते हैं त्रिमूर्ति के चित्र में समझाने के लिए। मैं कहता हूँ कि त्रिमूर्ति के चित्र में ऊंचते ऊंच बाप का परिचय दो। ऊंचते ऊंच बाप का परिचय देते ही नहीं, टिक टिक करते रहेंगे कार्तिक की तरह। तो क्यों कहते हैं? अरे अभी तक ज्ञान की टिक टिक हो रही थी कि असली को पहचाना, वो आत्माओं में जो तुरिया है जिसका किसी आत्मा के साथ टैली नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं। वो बता रहा है। क्या क्या बता रहा है? बाप का परिचय दो। टिक टिक करते रहते हैं, बाप का परिचय देते ही नहीं। इसका मतलब क्या है? बार बार वो बात मुरली में आती है। इससे मतलब साफ जाहिर होता है कि अगर आत्माओं के बाप शिव बाप की बात होती तो ये बात बार बार कहने की दरकार ही नहीं।
बाबा तिरुमूर्ति के चित्र में बात का परिचय देने के लिए जैसे ब्रह्मा का जैसा धागा लेकर ब्रह्मा का चित्र है तो ब्रह्मा का परिचय देना सहज है, लेकिन वो जो बात जिसको परिचय देना है उसमें तो शंकर का भक्ति मार्ग का चित्र है, असली चित्र है बात का चित्र तो वहाँ है नहीं, तो बात का परिचय वो चित्र से कैसे देंगे, बात का परिचय उस चित्र के आधार पर कैसे देंगे।
अरे त्रिमूर्ति के चित्र में बाप है या नहीं,
बाप का स्थान तो देख के दिखाया है,
ऊंचे ते ऊंचे बाप है या नहीं,
बाप है
ऊंचे ते ऊंचे है या नहीं,
ऊंचे ते ऊंचे बाप का तो असली चित्र तो उड़ा दिया,
उड़ा दिया। अरे चाहो तुम तो यहाँ देखो त्रिमूर्ति का चित्र जो साक्षात्कार से तैयार कराया, यहाँ देख लो,
तो वहाँ भक्ति मार्ग का चित्र संकल्प का चित्र दिखाया,
भक्ति मार्ग झूठा है। जो 2500 वर्ष हम फॉलो करते रहे जिसका वर्णन शास्त्रों में है वो सारे शास्त्र झूठे हैं, तुम पक्के ब्रह्मा कुमार हो क्या? ब्रह्मा कुमारी अभी कहती हैं शास्त्र सब झूठे।
नहीं बाबा, जैसे भक्ति मार्ग के चित्र में तिरुपति का जो चित्र होता है उसमें ब्रह्मा का चार मुख वाला दाढ़ी मुख वाला रखते है ना, तो यहाँ पे दादा लेखर ब्रह्मा का रखा है।
अरे बाबा ने जो चित्र दिया तुमको, बाबा उस चित्र पर समझाने की बात कर रहे हैं कि भक्ति मार्ग के चित्रों के ऊपर समझाने की बात कर रहे हैं।
बाबा इस चित्र में भी जैसे अभी चैतन्य ने जो पाठ दिखाया है, अभी जो वर्तमान में जो बाप का पाठ चल रहा है वही चित्र वहाँ है नहीं ना?
किसको कह रहे हैं आप, वर्तमान में किसका पाठ चल रहा है?
नहीं, जो भी अभी संगमी में जो बाबा ने
तीन मूर्तियों बताओ ना कौन सा पाठ चल रहा है अभी बाप का?
अभी तो पहली मूर्ति बर्मा का तो गया, मूर्ति का चल रहा है,
चल रहा है दूसरी मूर्ति विष्णु का चल रहा है,
शंकर का चल रहा है,
शंकर का चल रहा है। शंकर ऊंचे तो ऊंचे बाप है
नहीं है
तो पुरुषार्थ क्यों कर रहा है?
तो
ये बताओ
बाप का
पढ़ाई पढ़ना है याद की या सिर्फ पढ़ाई रहा है?
याद भी करते,
याद भी करता है ना, तो पढ़ाई पढ़ रहा है ना अव्वल नंबर सब्जेक्ट की, तो जो पढ़ाई पढ़ रहा है वो परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका, पद पाने योग्य हो गया, योग बल से विश्व की बादशाही मिलती है, बाहुबल से नहीं मिलती, तो प्राप्त कर ली
नहीं, मंजिल तक अभी नहीं पहुँचे,
तो तुम अधूरे बनोगे।
तो बाप का परिचय देने के लिए वहाँ बाप कैसे रखेंगे?
कहाँ तुमने रखा है बाप
के चित्र में?
बाबा ने तो नहीं बताया कि त्रिमूर्ति के चित्र में शंकर तुम्हारा ऊंचे से ऊंचे बाप है,
तो किसको दिखा कर वो परिचय देना?
वो ही है ऊंचे से ऊंचे बाप, जिस एक के लिए संस्कृत के श्लोक में बोला तुम माने तू, तू एक ही मेरा बाप है, तू एक ही मेरा माता है, तू एक ही मेरा सर्व संबंधी है। वो इस त्रिमूर्ति के चित्र में जो साक्षात्कार से बनाया गया वो कौन है?
वो चैतन्य चित्र वहाँ नहीं रखा
है, मैंने वो मर गया, वो मुर्दा है,
वो दुनिया में तो है लेकिन वो चित्र जो दिखा
है की बात नहीं, रहेगा या नहीं रहेगा तो कौन है वो? अभी भी है, रहेगा भी, पहले भी था, वो तीनों काल में है, इसलिए उसको गीता में बोला ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, जो सत है उसका कभी अभाव नहीं होता, जो झूठ है वो लोप हो जाता है। जैसे दुनिया के जो भी झूठे धर्म खंड हैं, धर्म पिताओं के द्वारा स्थापन किए हुए, चीन जापान बौद्ध धर्म खंड, यूरोप अमेरिका क्रिश्चियन धर्म खंड, अफ्रीका और अरब देश मुस्लिम धर्म खंड, ये सब लोप हो जाएंगे, वो अविनाशी धर्म खंड नहीं है, वो सत्य नहीं है। ऐसे ही एक बाप है जो मुरली में बता दिया इस सृष्टि पर कोई चीज सदा कायम नहीं है, सिर्फ एक शिव बाबा ही है, शिव बाप नहीं कहा, वो शिव बाबा अभी भी है, आगे भी रहेगा और पहले भी था, तीनों कालों में वो है इस सृष्टि पर, नदारद होता ही नहीं। और शास्त्रों में भी मान्यता है उसकी।
मेरा एक प्रश्न था।
हाँ,
भक्ति की सूरत के अनुसार और ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नमन नहीं करता हूँ।
है
ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नमन नहीं करता हूँ लेकिन परम ब्रह्म को नमन करता हूँ।
हाँ, परम ब्रह्म को नमन करता हूँ। हाँ,
शंकर और परम ब्रह्म
हाँ
देखा है कैसे।
हाँ, परम ब्रह्म वो है कि शिव जब आता है तो वो शिव आत्मा है या नहीं? हाँ? है आत्मा है या नहीं?
आत्मा का बाप है लेकिन।
हाँ, आत्माओं का बाप है लेकिन आत्मा है या नहीं? आत्मा है। आत्मा को पुरुष कहा जाता है या नहीं? पुरु माने शरीर रूपी, पुरी शा माने शयन करने वाला, आराम से रहने वाला। तो वो इस सृष्टि पर जब आता है तो शरीर रूपी पुरी में आराम से रहता है या बेआरामी महसूस करता है?
हाँ?
तो पुरुष पक्का है। अरे पुरुषों के बीच में पक्का पुरुष है कि नहीं? हैं? वो परम पुरुष है ना? और भगवान पुरुष रूप में आता है या माता रूप में आता है? पुरुष रूप में आता है। तो भगवान जब इस सृष्टि पर आता है तो प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करता है, प्रवृत्ति मार्ग के धर्म की स्थापना करता है या निवृत्ति मार्ग के धर्म की स्थापना करता है? प्रवृत्ति मार्ग के धर्म की स्थापना करता है। तो वो अकेला स्थापना करेगा या कोई दूसरा चाहिए? माता चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जिस माता रूपी आत्मा को वो पहले पहले चुनता है, जिस आत्मा रूपी माता को माता बनाता है, बड़ी से बड़ी माता, परे से परे स्टेज में रहने वाली माता, परम ब्रह्म, उस पर फिदा होता है। जैसे दुनिया का कोई भी पुरुष परिवार बनाने के लिए क्या करता है? अरे क्या करता है?
स्त्री का आधार लेता है।
कोई पर फिदा होता है कि नहीं? है? माशूक किसी को बनाता है या नहीं बनाता है? खुद आशिक बनता है कि नहीं बनता है? बनता है। आशिक माशूक के पीछे भागता है या माशूक का आशिक के पीछे भागती है? आशिक माशूक के पीछे भागता है। तुम्हारी 20 बार गरज पड़े तो भागो, तुम्हें गरज ना हो मत भागो। और यहीं आकर के पुरुष मात्र सब क्या हो जाता है? कमजोर पड़ता है कि नहीं? है? झुकना पड़ता है कि नहीं? है? तो ये परंपरा कहां से चली? मनुष्य सृष्टि में संगम युग से किसके द्वारा चली? परम ब्रह्म के द्वारा चली। परम ब्रह्म जब इस सृष्टि पर आता है तो जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा पुरुष तन है फिर भी उसको क्या बनाता? हा? माता बनाता। ऐसे ही इस मनुष्य सृष्टि में कोई पुरुष है, मेल है, फिर भी उसको किस भाव से स्वीकार करता? माता के रूप में स्वीकार कर लेता। और माता के रूप में स्वीकार करके जो भी पुरुष मात्र है जिसको माता बनाते हैं उसके जरा शरीर की सुंदरता पर फिदा होते हैं, शरीर के द्वारा जो पार्ट बजाए जाते हैं, कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों की सुंदरता पर फिदा होते हैं या नहीं? फिदा होते हैं ना? तो ऐसे ही वो त्रिकालदर्शी शिव बाप जो तीनों कालों का ज्ञाता है, इस सृष्टि में, मनुष्य सृष्टि में उस आत्मा को पहचान सकता है या नहीं पहचान सकता है, जो सारे चक्र में हीरो पार्ट बजाने वाली है, मनुष्य सृष्टि के बीच पहचान सकती है या नहीं? पहचान सकती है। तो जिसको पहचाना, वो आत्मा शिव बाप के समान सच्ची होनी चाहिए सृष्टि रूपी रंगमंच पर, या उसे झूठा समझता है धोखेबाज? सच्चा समझता है तभी अपनाया ना। अंदर और बाहर दोनों की सुंदरता देखता है या सिर्फ आंतरिक या बाहरी सभी सुंदरता देखता है? अंदर की भी बाहर की भी सुंदरता देखता है। तो वो आत्मा उसकी नजर में है कि यही आत्मा है जिसका मैं आधार लेता हूँ, नाम रखता हूँ भारत माता। क्या नाम रखता हूँ? भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो जन्म जन्मांतर कर्म से या वाचा से या दृष्टि से संकल्पों से ज्ञान की रोशनी में ही लगा रहता है। अज्ञान में जाता ही नहीं। और द्वैतवादी द्वापर युग से जो द्वैत फैलाने वाले अज्ञानी आत्माएं हैं, द्वैत अच्छा या अद्वैत देवता अच्छा? अद्वैत देवताएं अच्छे, उनको सपोर्ट करने वाला। और जो द्वैत फैलाने वाले हैं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो कुल, दो दो मतें इस दुनिया में फैला देते हैं और झगड़े चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। झगड़े से दुख होगा या सुख होगा? दुखी होता है। वो आत्मा जो एक ही सृष्टि रूपी रंगमंच पर सत्य पार्ट बजाने वाली है, सच्चा पार्ट बजाने वाली है, बाप ने जो बोला उसके अनुसार ही पार्ट बजाने वाली है, उस आत्मा में सत्य के संस्कार हैं या नहीं? तो जो झूठे हैं द्वापर युग से आने वाले, उनसे टक्कर लेगी या चुपचाप बैठी रहेगी, हाथ उठा देगी बौद्धियों की तरह? बौद्धि में जो अहिंसा परमो धर्मा बोलते हैं, वो सच्ची बात है या झूठी बात है? सच्ची बात है। क्रिश्चियंस ने, मुसलमानों ने आक्रमण किया भारत पर और बौद्धियों ने हाथ उठा दिए, हम नहीं लड़ाई लड़ेंगे, हम खून खराबा नहीं करेंगे, अहिंसा परमो धर्मा बोला कि नहीं बोला है? और किया कि नहीं किया? अपने बीवी बाल बच्चों को दुख दिया या सुख दिया? है? जो अपने ही बीवी बाल बच्चों को, अपने ही संसार को दुख देता है, वो हिंसक है, दुखदाई है या सुखदाई है? दुखदाई है। तो द्वापर युग से जिन आक्रांताओं विदेशियों से उस आत्मा ने जन्म जन्मांतर टक्कर ली है, क्या हिंसा के आधार पर हिंसा से ही जवाब दिया? क्या विदर्भियों के प्रति लूज होके रहना है या शक्ति स्वरूप बनना है? तो जो आत्मा भारत की इस सच्ची रूपी रंगमंच पर ऐसा पार्ट बजाती है भारत में रह करके कि विदेशी आक्रांताओं को नाक रगड़वा देती है और भगा देती है, हिस्ट्री देख लो, अलेक्जेंडर हो, नेपोलियन हो, मुसोलिनी हो, कोई भी विश्व विजय की आकांक्षा रखने वाला धर्म का फॉलोअर हो, भारत में आकर के सब धूल चाट के गए उसके सामने या जीत के गए हैं? धूल चाट के गए ना, विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्राण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो क्या कपड़े के झंडे की बात है, जड़ कपड़े की, चैतन्य शरीर रूपी तीन कपड़ों की बात है या जड़ कपड़े की बात है? हैं? चैतन्य कपड़ों की बात है। उन चैतन्य कपड़ों में भी बाबा ने बोला ये त्रिमूर्ति का चित्र जो है वो यथार्थ नहीं है। क्या तुमको यथा अर्थ चित्र निकालना चाहिए। कैसा चित्र? ब्रह्मा द्वारा स्थापना। स्थापना सिर्फ ब्राह्मण धर्म की नहीं, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करे तो ब्रह्मा, या स्थापना न करे और शरीर छोड़ के चला जाए तो पक्का ब्रह्मा। स्थापना करे तो पक्का ब्रह्मा। इसलिए पहली अव्यक्तवाणी में बोल दिया भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। क्या वो भारत माता प्रैक्टिकल साकार रूप में जो भारत का पार्ट बजाने वाला व्यक्तित्व है, चैतन्य आत्मा उसकी भी माता है। क्या नहीं समझ में आया? माता भी है और पत्नी को माता के रूप में देखो तो भी सच्चाई है, बहन के रूप में देखो तो भी सच्चाई है, बेटी के रूप में देखो तो भी सच्चाई है। माता में सारे गुण भरे हुए हैं सच्चाई के या नहीं भरे हुए हैं? बस
बाबा अभी तक हम छोटी मम्मी को ही भारत माता समझते थे,
अब कौन हो गया?
अब तो अभी बाबा ने जो बताया अभी मेरी विजन
है
परम नाम से जो ज्योति
है,
परम नाम से जो परम ज्योति आते है ना शिव, जिसका नाम शिव है, वो जिस आत्मा का आधार लेते हैं वही परम ब्रह्म ही भारत माता है।
प्रैक्टिकल में बताओ, जो माता के रूप में चोलाधारी हो, ब्रह्मा को ब्रह्मा कह तो दिया लेकिन वो तो दाढ़ी मूंछ वाला पुरुष था, या प्रैक्टिकल में स्त्री था?
दाढ़ी मूंछ
वाला तो उसकी पूजा नहीं होती है। वो ही आत्मा जब कोई माता में प्रवेश करती है तब जगदम्बा के रूप में, महाकाली के रूप में पूजा होती है। प्रैक्टिकल रूप की पूजा होगी या सिर्फ ज्ञान से समझ लेने मात्र से पूजा होगी? तो वो प्रैक्टिकल रूप को समझो कौन है। वो भारत माता जिसके आने से ही रुद्रमाला में जो डायरेक्शन दिया रुद्रमाला बाल के बच्चों को, क्या डायरेक्शन दिया? विजय माला का आवाहन करो। वो छोटी शहद की मक्खियों की रानी है, पूरी माला का एक साथ आवाहन करना हो तो क्या करो? मक्खियों की रानी को आवाहन करो। तो वो भारत माता शिव शक्ति अवतार जब आएगी तो दक्ष से राजधानी स्थापन हो जाएगी। प्योरिटी दुनिया के सारे कार्य करती है कि इम्प्योरिटी दुनिया के सारे कार्य करती है? प्योरिटी से दुनिया के सारे कार्य होते हैं। शंकर नहीं कर पाएगा, ब्रह्मा नहीं कर सकता, दादा लेखराज ब्रह्मा दाढ़ी मूंछ वाला कौन कर सकता है? कौन कर सकता है?
प्रैक्टिकल
में जो माता फीमेल का पार्ट बजाए वो ही है शिव शक्ति, जो स्वर्ग का गेट खोलने वालों में अव्वल नंबर है। नौ दुर्गाओं में जब नौ देवियों की पूजा होती है तो पहले पहले किसकी पूजा होती है, महागौरी की पूजा होती है, महाकाली की सबसे बाद में पूजा होती है। ओम शांति।